ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Bilai in North, he comes from a very pure family. He has been reciting Bhagavad Gita and many other shlokas from his childhood. I have met his mother and father. So later on, that again was unfolded by His Grace Devamrit Prabhu, when Devamrit was coming to IIT Bombay for the program, where myself, Gauranga Prabhu and Paramahamsa Prabhu, Krishna Kumar Prabhu, Nayan Ranjan Prabhu, five of us, we were going for the program together. And I had the good fortune of being with him in the same days in IIT, as well as later when he was working with Kirloskar Oil Engines for a few months in Nigdi area. So although I call him as a friend, spiritually he is light years ahead of me, setting a very first class example. Even in college days, we all used to get a lot of inspiration from his spiritual talks. Very, very inspirational. And besides his scholarship in the subject of Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, and he is attracting masses through the Star Plus, for me, the greatest attraction is how he is shouldering the burden of the spiritual master by becoming a very trustworthy disciple in Bombay. Maharaj has a few trustworthy disciples with whom Maharaj shares many of the temple activities. And especially, I have personally learnt many good things from him. Instead of just talking of the accolades that the world gives him, I personally would like to round up those qualities which are very specific to a devotee like him. From him I got to learn how one should very attentively observe the desires of the spiritual master and needs of the spiritual master and learn to fulfill them. So he would associate with Maharaj, Radhanath Swami Maharaj, in such a way that he would understand his mind, his needs, and then he would go and offer proposals. And they have about, in Bombay, 2007 youths connected to Chaupati Temple. So recently Gaurampu was showing me the report of youth preaching in Bombay. Connected to Bombay, there are many satellite centers all over Maharashtra and all over India. So he was recently telling that we should have a collaborative meeting of Bombay and Pune together, exchanging ideas of youth preaching. So besides congregation preaching, in youth preaching in Bombay was actually taken lead by Gauranga Prabhu in Bombay, with all the preachers coming together and making a plan, beginning with Prerna. And today, the Prerna has taken a very huge shape. Successfully, they completed 25 Prerna festivals, after which they had the Jubilee festival also. So this kind of plans for preaching and propagating on one hand, on the other hand, trying to understand the need of the spiritual master and extend himself. Like, for example, recently there was a Diksha program in Bombay, selection of the candidates. So I saw Gaurampu was sitting all through, practically almost 8 hours, morning to evening, two Sundays or so, you know, checking all the photos of the people and the candidates, whether they are fit or not. So once he was telling me, I take up those services which are very dear to Maharaj's heart, he was telling. So when I went last visit to Bombay, he took me to the Govinda restaurant. And there he has a program every Thursday afternoon for the Govinda restaurant employees. About how many of them? 33 employees, and he knows each of them by their name. Every one of them. He was introducing them to me. And at the end of the program, there was a dancing kirtan, roaring dancing kirtan he was doing. Right from the manager down to the pot washer, everyone was dancing in the kirtan. And then Gauranga Prabhu told me, I take this program personally, every Thursday I take it. Because for Maharaj, this Govinda is very important. And he has great anticipation from this, preaching through Govindas and people coming to temple. So, and he said, when I do this program weekly once and have the dancing kirtan, there are no fights between devotees. Yeah. I mean, the employees, they are all blissfully absorbed in chanting and dancing. So I observed one thing that is very attentive in serving Maharaj very personally and has conquered his heart, and that is a very great lesson for me. And also whenever I go to Bombay, I spend a little extra time with him and learn the subtleties of devotional service from him. The last probably I think 6 months to 1 year, I saw a sudden transformation in Gauranga Prabhu. A transition from Bhagavatam to Chaitanya Charitamrita. A special promotion of consciousness. So earlier whenever I would go, he would open the Bhagavatam and say something. Now any time I see him, he is simply floating in a ocean of Bengali verses. So that is why today morning also you must have observed, there is a Chaitanya Charitamrita verse. Once he opens the mouth, you will come to see stream of Bengali verses flowing from his mouth. You will be stunned whether he is from Bengal or not. Speaks so much CC now. So he told me, His Holiness Radhanath Swami Maharaj speaks a lot of Chaitanya Leela. So I have decided to speak on Chaitanya Shiksha. So what lessons we learn from the Chaitanya Leela. In order to learn myself and also to teach the devotees, he said, I have taken this project now. And he has started from Madhya Leela. And he is reading and going and propagating the glories of Lord Chaitanya Mahaprabhu far and wide. So I am very thankful to Gauranga Prabhu for coming to Pune. Once before he had come for the prerana. So I told him, you keep coming every 2-3 months, I told him at least, if you cannot come every month. So he has kindly agreed to come now this time for a couple of days. So this evening we have a prerana program, and tomorrow morning Bhagavatam class again. You all can come for the Bhagavatam tomorrow again. And tomorrow evening we have a meeting with all the counselors. So Govind Prabhu and Gauranga Prabhu, these two people have a very special affection for Pune devotees, and they don't mind coming and extending themselves for several programs. Like they had come for the Gauranga Sabha meeting also for 2-3 days. So I want to offer my special thanks to Gauranga Prabhu, and you all take advantage of his presence for the next 2 days, today and tomorrow. Gauranga Prabhu ki. Thank you.
My God, what an introduction. So anyway, if I have to defend that, it will take another half an hour. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we'll Sri Chaitanya Charitamrita se Madhya Leela ke is shlok par charcha karenge. तो प्रसंग है प्रताप रुद्र महाराज का उद्धार. तो इस सेमिनार का शीर्षक मैं देता हूं, फेलियर एज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. कैसे प्रताप रुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु की कृपा के अभिलाषी दीर्घकाल तक प्रयास करने पर अंत में महाप्रभु उन पर कृपा किए. पिछले वर्ष में आया था तो मुझे याद है कि मैं वृत्रासुर और इंद्र ये प्रसंग पर चर्चा किए थे हम. और अभी हाल ही में जो श्रीमद् भागवत प्रवचन चौपाटी मंदिर में हो रहे हैं, उसमें राधानाथ महाराज इंद्रदेव के सफल पद के ऊपर चर्चा कर रहे थे. ठीक है, माइक ठीक है, अभी कीप इट लाइक दैट, डोंट चेंज. तो इंद्रदेव के विषय में कह रहे थे कि इंद्रदेव स्वर्ग के देवता बने, स्वर्ग के राजा बने, और स्वर्ग के राजा बनने पर भी वृत्रासुर को तो पराजित किया एक दृष्टि से, लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में ही अटके रहे इसलिए वास्तव में एक दृष्टि से उनकी पराजय थी. सो इंद्र वॉज सक्सेसफुल in retaining his position as king of heaven. बट स्टिल ही फेल्ड. तो इसके लिए मैं एक और विचार कर रहा था कि वृत्रासुर और इंद्र वाला जो प्रसंग है उसका एक शीर्षक देना चाहिए, सक्सेस एज स्लिपिंग स्टोन टू फेलियर. कि कैसे इंद्रदेव इतना सफल होने के बाद, क्योंकि भोग की इच्छा से पूरी तरह आसक्त हो गए, इसलिए भोग के आगे वो कुछ विचार नहीं कर पाए. तो प्रतापपुत्र महाराज ये भी एक राजा है, इनके पास भी सत्ता है, नियंत्रण की शक्ति है. इंद्र के पास भी हर प्रकार से भोग के साधन है, शक्ति है, नियंत्रण के साधन है. लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर हम देखेंगे चेतना का. तो ये श्लोक में यहां वर्णन आ रहा है, यदि सही महाप्रभुर न पाई कृपा धान. बोलिए कि राज्य की बदेह सब अकारण. प्रतापपुत्र महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि महाप्रभु की कृपा धन प्राप्त नहीं हुई तो ये राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा, ये देह को लेकर क्या करूंगा, सब अकारण है. तो प्रतापपुत्र महाराज के क्लिप है क्या आपका? अलग अलग गुणों का हम अभी चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले प्रतापपुत्र महाराज, हाँ थैंक यू, इनके विषय में वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में. जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस लौट के आते हैं और लौट के आने के पश्चात महाप्रभु अब आने ही वाले हैं, तब प्रतापपुत्र महाराज सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रश्न कर रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु कब आने वाले हैं और इनके विषय में आप क्या जानते हो. ये प्रश्न पूछा जा रहा है सार्वभौम भट्टाचार्य से. राज को हे तारे तुम्हें यही ते केने दिले, पाए पड़ी यत्न करी केने ना राखिले. पूछ रहे हैं कि देखिए आप ये चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी से जाने क्यों दिए. सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछ रहे हैं, अगर उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं तो पाए पड़ी उनके चरणों में आपको गिरना चाहिए था, बहुत प्रयत्न करना चाहिए था, और क्यों उनको यहां पर जगन्नाथपुरी में नहीं रख लिए. इस तरह से वो कह रहे हैं, क्योंकि प्रतापपुत्र महाराज के मन में ये उचित शंका है. सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए तीर्थ यात्रा करने. तो प्रतापपुत्र महाराज सोच रहे हैं, अरे जगन्नाथपुरी से श्रेष्ठ तीर्थ स्थान है नहीं, जगन्नाथपुरी को छोड़ के कौन सा तीर्थ यात्रा करने कोई जाएगा. तो इसलिए वो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं. तो भट्टाचार्य उसके उत्तर में कह रहे हैं, भट्टाचार्य कहते हो ईश्वर स्वतंत्र साक्षात श्री कृष्ण ते हो नहीं परतंत्र. कि राजन ये चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण है साक्षात, ये स्वतंत्र है और किसी के अधीनस्थ काम नहीं करने वाले. उन्होंने विचार किया कि वो भ्रमण करेंगे दक्षिण भारत की, इसलिए गए हैं, अब चुपचाप हमें प्रतीक्षा करना है और कुछ नहीं. और ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया. तो कहते हैं, तथापि राखी ते तारे बहु यत्न कहिलू ईश्वर स्वतंत्र इच्छा राखी ते नारिलू. बहुत प्रयास किया मैंने, बहुत पैर पड़े कि आप मत जाइए. और यह सत्य है कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर बिठा लिया था और 3-4 दिन तक उनके पैर पड़ के उनको वहीं रहने के लिए निवेदन किया. लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब निश्चय कर लिया कि मुझे अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण भारत में जाना है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे स्निग्ध विशेष प्रेमी भक्त का सानिध्य भी परित्याग करके तुरंत दक्षिण भारत के लिए चले गए। तारे उपेक्षिया कोयला शीघ्र गमन के बुझीते पारे महाप्रभुर चित्त मन। तो जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकलकर दक्षिण भारत की ओर जाने लगे तो सर्वम भट्टाचार्य खड़े खड़े मूर्छित हो गए और धरती पर पड़ गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कि महावदन्याय अवतार हैं, मुड़ के एक बार देखे नहीं कि सर्वम भट्टाचार्य के ऊपर क्या बीती है। तारे उपेक्षिया कैला, पूरी तरह से उपेक्षित करके वो निकल गए शीघ्र गमन और जल्दी जल्दी भाग गए। उनको डर लगा कहीं उठ के फिर पकड़ न लिए। शीघ्र गमन, जल्दी जल्दी भाग के निकल गए के बुझीते पारे महाप्रभुर चित्त मन। तो यहां पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन समझ सकता है कि चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या क्या विचार उठते हैं और किस तरह से वो अपने लीला क्रीड़ा रचाते हैं, ये कह पाना बहुत कठिन है। तो यहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य अपना अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि महाराज हमने बहुत प्रयास किया, ईश्वरेर स्वतंत्र इच्छा राखी थे नारीलो। ये ईश्वर हैं, उनकी इच्छा स्वतंत्र है और उनको कोई नहीं रोक सकता। अर्थात मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने प्रेमी स्निग्ध स्नेहिल भक्तों को भी तत्क्षण त्याग कर उनके कलेजे को टुकड़े टुकड़े करके निकलने के लिए तैयार थे। पूरे दक्षिण भारत की दीर्घकालीन यात्रा के पश्चात पुनः लौट के आए। अब प्रतापपुत्र महाराज उनके स्वागत करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो जब प्रतापपुत्र महाराज सुनते हैं भट्टाचार्य के मुख से कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वतंत्र, तो उनका उत्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो कहते हैं, राजा कहे भट्ट तुम्हें विज्ञा शिरोमणि, तुमे तारे कृष्ण कहे ताते सत्य मानी। अरे भट्टाचार्य, आप क्योंकि इस चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण कहते हो, इसीलिए मैं ये चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण मानने के लिए तैयार हूं। तो ये कितना सुंदर बात बता रहे हैं। भट्ट तुमी विज्ञा शिरोमणि, भट्टाचार्य तुम कितने बड़े विद्वान हो, पंडित हो, महान श्रेष्ठ भक्त हो, नाना प्रकार के शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, इसलिए मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि यदि आप कहते हो कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो वो होंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं, तुमी तारे सत्य कृष्ण कहे ताते सत्य मानी। तुम कहते हो ये कृष्ण है, मैं बिना किसी तर्क के उसको स्वीकार करता हूं। तो यहां आरंभ होता है प्रतापपुत्र महाराज के दैवी गुणों की श्रृंखला। सर्वप्रथम किसी भी साधक को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए जो गुण की आवश्यकता है वो है श्रद्धा। यह श्रद्धा के बिना भक्ति लता बीज का विकास संभव नहीं। और महत्वपूर्ण बात यह कि यह श्रद्धा किसके अंदर है। प्रताप रुद्र महाराज जैसे इतने बड़े सम्राट, पूरे उड़ीसा और दक्षिण भारत की राजधानी कटक थी और उनके नियंत्रण में हजारों की संख्या में सैनिक थे। पूरा उड़ीसा, कुछ बंगाल के भाग और दक्षिण भारत तक, मद्रास तक का पूरा प्रांत उड़ीसा की राजधानी मानी जाती थी। और उस समय वर्णन किया जाता है कि मुगल और अंग्रेज दोनों मिलकर जगन्नाथपुरी पर कभी आक्रमण नहीं कर पाए और इसीलिए जगन्नाथ मंदिर के अभी भी जितने सेवा पूजा इत्यादि के जो भी श्रृंखलाएं हैं वो यथारूप हैं। सोमनाथ मंदिर को कई बार डाका डाला गया और उसका जितना सोना चांदी वगैरह लूट के ले गए, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर आज तक कोई दूसरी शक्ति, कोई सत्ता आक्रमण नहीं कर पाई। जगन्नाथ के जितना भी अभी तक का ऐश्वर्य है, यथारूप सर्वसंपन्न संपदा वहीं पर है। जय जगन्नाथ भगवान की। और ये पूरे जगन्नाथ भगवान के सेवा पूजा करवाने वाले साक्षात प्रताप रुद्र महाराज, विचार कीजिए कितनी उनकी शक्ति है। तो ऐसे शक्तिशाली राजा वो श्रद्धा रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कोई टू बेडरूम फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति थे, ऐसा नहीं कि कमा कमा कर फिर उनको राजमहल का अपना रेंट भरना पड़ता था, हर महीने चिंता लगी थी कि अब बिल कौन भरेगा, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे। सामान्य राजा अर्थात उनको भी पता नहीं कि राजकोष में कितना खजाना है। ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। सबका स्वप्न होता है कि एक दिन ऐसा आए, लेकिन जिंदगी गिनने में निकल जाती है। लेकिन यहां पर प्रताप रुद्र महाराज के धन संपत्ति की क्या सीमा है कोई कह नहीं सकता। इतना धन जब होता है तो लगता है कि मुझे कौन क्या ज्ञान देगा, मैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में डोनेशन दे के पीएचडी ले सकता हूं और कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आके झुकता है। इतना धन इतनी सत्ता के साथ वो सार्वभौम भट्टाचार्य को कहता है कि तुम ही विज्ञान शिरोमणि, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत अति विशेष बात है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी MIT में लेक्चर देने गए और बड़े बड़े विद्वान लोग वहां बैठे थे और प्रभुपाद ने कहा आपके कॉलेज का नाम MIT है, वेयर इज द नॉलेज ऑफ ऑलमाइटी। नाम MIT दिया है लेकिन भगवान के बारे में यहां पे कोई ज्ञान नहीं। तो एक भारतीय व्यक्ति वहां पर प्रोफेसर थे, वो उठकर कहने लगे कि ये सब ठीक है लेकिन आप ये सर पे तिलक क्यों धारण करते हो, ये मट्टी क्यों लगाया सर पे। तो प्रभुपाद उल्टा चिल्लाए, तुमने गले में ये टाई क्यों लटकाया बताओ। वो तुरंत टाई उठा के देखने लगा क्योंकि उसने जीवन में कभी विचार नहीं किया था कि मैं क्यों लटकाता हूं। काफी देर तक खड़ा खड़ा देखता रहा, प्रभुपाद ने कहा बैठ के सोचो। अगले आदमी को बोला तुम प्रश्न करो, और वो पूरा लेक्चर में अब वो लड़का देख ही रहा था कि ये क्यों पहन रहा हूं मैं करके। फिर प्रभुपाद ने अंत में कहा कि प्रश्न पूछना है तो कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए, कोई भी ऊटपटांग प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साधु के पास जाओ तो क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है वो पता होना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों की। डॉक्टर के क्लिनिक में लंबी लाइन लगी है, पहले आदमी को पूछो क्यों खड़ा है भाई, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। तो यहां क्यों खड़ा है, नहीं सुना है कि बहुत अच्छा डॉक्टर है ये। अरे डॉक्टर है तो तुम्हारा वहां कैसे, उसका टायर पंक्चर कैसे ठीक करेगा। नहीं नहीं इंजेक्शन देगा तो ठीक हो जाएगा ना, कोई संबंध ही नहीं उसका। दूसरे को पूछो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, अरे मेरा दिवाला निकल गया, बैंक में पैसा डाला था बैंक बंद पड़ गया। तो डॉक्टर के पास क्यों आए हो, नहीं नहीं उसके पास कोई दवा होगी। और डॉक्टर जब बाहर आके ये सब एक एक पेशेंट का सुनेगा कि किस किस कारण से आए हैं, वो फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाएगा। बोलेगा 4.5 साल मैं झक मार के क्या पढ़ा, कितने प्रकार की दवाइयां रखी है लोगों को देने के लिए और सामने आ रहे हैं पंक्चर बनाने वाले, क्या फायदा मेरे डॉक्टरी का। तो अर्थात इसका एक स्पेशलाइजेशन एक है और उपाय लेने के लिए दूसरे लोग आए हैं, तो जानते ही नहीं कि डॉक्टर की शक्ति क्या है। तो सोचिए कैसे कृष्ण भगवान फ्रस्ट्रेट होते होंगे मंदिर में खड़े खड़े, हाथ में बांसुरी लिए खड़े हैं अपना प्रेम देने के लिए और लोग सब्जी का पूरा एक लिस्ट लेके आते हैं कि भाजी दो, हमको भोजन दो, हमको धन दो, हमको ये दो, हमको वो दो, नाना प्रकार के समस्या लेके आते हैं। शादी करा दो, शादी करा दिया बोलते अब परेशान हो गया, परेशानी दूर करा दो। अरे पहले तुमने ही पूछा था उसका मैंने उत्तर दिया, तो उल्टा भगवान को गाली देके निकल जाते हैं। फिर भी उनकी महान कृपा है कि ऑल्टर से भागते नहीं वो, कोई सामान्य व्यक्ति तो कब का भाग जाता। लगातार कोई इस तरह परेशान करते रहे ऐसे कार्य के लिए जो वो कभी नहीं करना चाहेगा। तो वैसे ही सैफरन कपड़ा शेव्ड हेड तिलक को देखकर 100 लोग आएंगे तो उनके मन में 100 विचार आएंगे कि ये क्या क्या कर सकता है, ये व्यक्ति का स्कोप क्या क्या है। हाँ, गीता भागवत देने के लिए हम रेडी हैं, लेकिन उसको वो नहीं सुनना है। वो पहले हाथ दिखाएगा, चेहरा दिखाएगा, बोलेगा बताओ मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, मेरे भूत में ऐसा क्यों हुआ, मेरे मन में भूत क्यों घुस गया है। अरे जीवन के लक्ष्य से कोई संबंध है नहीं, गीता से कोई संबंध नहीं, उल्टा परेशान करते रहते हैं। तो इसलिए साधु कौन है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, और भगवान कौन है, जो जीव के सनातन स्वामी हैं और अपना शुद्ध कृष्ण प्रेम देने के लिए जो तैयार हैं। प्रेमा पुमर्थो महान, ये संपदा छोड़कर लोग बाकी हर प्रकार की वस्तु भगवान से लेने के लिए लालायित हैं। तो इस तरह के साधक जैसे प्रताप रुद्र महाराज, जो कि इतने प्रतिष्ठित पद पर होने पर भी देखिए कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं और श्रद्धा उनके मन में है। तो ये आदव श्रद्धा, ये आरंभ है। जब श्रद्धा होती है तो धीरे धीरे सब कुछ हो सकता है, और अनुकूल संग में ये तुच्छ स्फुलिंग एक विशाल महाअग्नि के रूप में परिवर्तित हो सकती है। जैसे ग्रीस में एक परिवार था, और वो पिताजी भक्तों को हरिनाम कीर्तन करते हुए देखा करते थे, घर की बात है, तो बाजार में हरिनाम जाते हुए देखते थे, हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए, तो उनको बड़ा उठपटांग लगता था, ये क्या ये लोग खुले बाजार में हाथ उठाकर घूम रहे हैं, इनको कोई काम धंधा नहीं है क्या। तो घर पे आके वो जब लंच या डिनर के लिए बैठते थे, तो जब लंच या डिनर आने में थोड़ा लेट होता तो प्लेट और चम्मच लेके जोर जोर से वही बजाते थे, हरे कृष्णा करके मजाक करते थे, और उनका छोटा सा बच्चा था 5 साल का, उसको सुनाते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और ऐसे ऐसे करके नाटक करते थे, एक्टिंग, क्योंकि वो देखा था हरे राम करते हुए भक्तों को। और फिर बच्चा भी अपना प्लेट लेके टिंग 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 करता था हरे कृष्णा, उसको समझता नहीं था क्या बोल रहे पिताजी, अभी तक नॉर्मल थे अभी क्या हो गया अचानक। लेकिन ऐसा चलता रहता था कई साल तक। बच्चा 15 साल का हुआ, उसको मालूम नहीं था कुछ कनेक्शन क्या है, वो गया और रास्ते में हरिनाम देखा उसने पहली बार। जैसे हरिनाम देखा भक्तों को जा रहे, ये तो मैं घर पे डिनर पे रोज बजाता था, तो बोला अरे यहां पर मंदिर में आप उठकर रोज बजा सकते हो। वो बच्चा गया सीधा मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन हो गया। पिताजी झगड़ा करने आए, मेरे बच्चे को छोड़ो, तो बच्चे ने कहा आप ही ने सिखाया था मेरे को हरे कृष्णा, तो प्लेट और इसमें क्या, हम तो करताल से बजाते हैं और प्लेट में प्रसाद खाएंगे अभी हम। तो कहां थोड़ी सी श्रद्धा होती है और कहां एक संग मिल जाता है, तो करीब 10-15 साल के बाद भी व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है। जैसे मैं बता रहा था कि 1992-93 में जब हम लोग IIT में थे, राधेश्याम प्रभु मैं, तो हॉस्टल 7 में कुछ पोस्ट ग्रेजुएट लड़के प्रोग्राम में आते थे, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ थे, मतलब उठा उठा के उच्च कोटि का फिलॉसफी भी डालो या भयंकर कीर्तन करो या 56 भोग भी खिलाओ, लेकिन वो एक माला के आगे बढ़ा ही नहीं सकते, उनको चाहे कुछ भी कर लो, हर प्रकार का मंत्र तंत्र जादू टोना कुछ भी चला, वो एक माला के आगे नहीं बढ़ेगा, और कुछ भी बोलो बोलेगा बहुत बढ़िया है, आप लोग बहुत बढ़िया हो, मंदिर भी बढ़िया है, शास्त्र भी बढ़िया, सब बढ़िया, माला कितना एक उसके आगे नहीं करूंगा। तो वो लड़का, अभी मैं न्यू जर्सी टोबैको गया था पिछले साल ईस्ट कोस्ट में US के, तो वहां मेरे प्रोग्राम में आया, तो मैं बोला कितने 13 साल के बाद तुमको देख रहा हूं, कहां से आ गया आज। तो बोले नहीं हमारे यहां पर वो बांट रहे थे कुछ पैम्फलेट, तो अचानक मेरे बिल्डिंग में भी लिफ्ट पे एक पैम्फलेट लगा था, उसमें तुम्हारा फोटो लगा था, तो देख के मैं सोचा कि मिलना चाहिए, इतने साल से मिला नहीं। तो मैं बोला मुझे याद है उस समय आप आते नहीं थे, इतना मैं बुलाता था, आके एक माला करके निकल जाते थे और दूर दूर रहते थे हमसे। बोले हाँ, मेरे को डर लगता था कि मैं आपके समान वो हरे कृष्ण में ज़्यादा आगे बढ़ के साधु नहीं बन जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता था। उसके बाद ये अमेरिका आया, अभी शादी वादी हो गई, अभी मेरे को कोई डर नहीं है अभी, इसलिए मैं आता हूँ, इसलिए मैं आ गया। तो मैं अब ये प्रोग्राम अटेंड करूँगा। तो प्रोग्राम अटेंड करने लगा और 3 दिन के प्रोग्राम के बाद 16 माला शुरू कर दिया। मैंने कहा 16 बरस लगे तुमको 16 माला पे आने के लिए, एक माला 1992 और उसके बाद अगला जो है सीधा 14 साल के बाद उन्होंने 14 माला बढ़ाया। देर आए दुरुस्त आए। तो इसलिए थोड़ा भी अगर संग कहीं होता है तो ये सोचना नहीं चाहिए कि ये वेस्ट गया। तो कई बार प्रचार में हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या भाई इतना पानी डालो, कुछ उग ही नहीं रहा है, यहाँ पे पूरा लेक बन जाएगा ऐसा लग रहा है, पानी इतना डाला लेकिन पेड़ उगने का नाम नहीं ले रहा है। तो विचार करना चाहिए कि चलो भाई ये अलग टाइप का पेड़ है। कुछ कुछ पेड़ होता है, नाम मैं भूल गया, 25 साल तक उसको पानी देना पड़ता है और 25 साल के बाद वो 1 साल के अंदर पूरा सीधा उठ के खड़ा हो जाता है। ऐसा कोई तो एक पेड़ का नाम कोई बता रहे थे, अपने चैतन्य चरण प्रभु जानते होंगे ये सब, वो भी बहुत बड़े पंडित हैं, वो क्या क्या लेक्चर दिया आके वहाँ पे चौपाटी में, पूरा विज्ञान का पूरा पर्दाफाश कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि श्रद्धा वाली बात, और हम लोग सब यहीं पर अटक जाते हैं, आदव श्रद्धा, क्योंकि भारत में हमको कूट कूट के भरा गया है कि श्रद्धा रखो तो केवल जो विग्रह खड़ा है ना, जो हिलता नहीं और बोलता नहीं, वो विग्रह पे श्रद्धा रख सकते हो, लेकिन जो हिला और बोला मानव, उस पे कभी भी पूरा श्रद्धा मत रखना। रखना लेकिन थोड़ा अपने पास भी रखना, वो कभी भी आपको चकमा दे देगा। तो इसी कारण किसी भी व्यक्ति पर श्रद्धा रखना बहुत कठिन हो जाता है, और इसलिए श्री गुरु का आश्रय लेना और बिना किसी निर्बाध रूप से उनके नियमों को और उनके आदेशों को पालन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि तर्क का अपना जो सीढ़ी है निरंतर चलता रहता है। इसलिए कल मैं वर्णन कर रहा था, गच्छताम मातुल कुलम भरते न तदानगम, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीत प्रीति पुरस्कृत। रामायण में चर्चा हो रही थी पिछले सप्ताह, तो रामायण में सुंदर श्लोक आता है जहां शत्रुघ्न उनका वर्णन आ रहा है कि शत्रुघ्न शब्द का अर्थ क्या है, शत्रुघ्न कौन है। तो प्रसंग आता है कि प्रभु रामचंद्र जी का सीता देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ और साथ साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी विवाह संपन्न हुआ। अब पूर्व निर्धारित उनकी कुछ योजना के अनुसार भरत महाराज को केके प्रदेश जाना था अपने मामा के यहां, गच्छताम मातुल कुलम, तो मामा के घर पर उनको जाना था, पहले से निर्धारित था। ये तो अचानक ये धनुर्यज्ञ इत्यादि हो गया था, ये बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे अचानक उनका विवाह हो गया, लेकिन मामा जी आकर तैयार थे लेके जाने के लिए। तो भरत महाराज जाने लगे और अपने साथ साथ शत्रुघ्न को भी साथ में ले लिए। भरतेन तद अनघ, तो शत्रुघ्न का पहला गुण यहां बता रहे हैं, अनघ अर्थात पाप से मुक्त, सिनलेस। और कह रहे हैं शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृत। अभी नवविवाहित उनका जीवन आरंभ होने वाला है, तभी भरत कह रहे हैं शत्रुघ्न को चलो मेरे साथ, और पत्नी से विच्छेद करके पत्नी के वियोग को न सोचते हुए साथ में उनको लेके चले गए के प्रदेश। अरे भाई, जब किसी को साथ में लेके जाते हैं या किसी को कोई सेवा देते हैं, कोई काम करवाते हैं, तो पहले उनकी अनुमति लेते हैं कि भाई ये मैं आपको सेवा दूं क्या, या मैं आपको कुछ इस तरह से अपने साथ लेके जा सकता हूं इत्यादि, ये प्रश्न किया जाता है। लेकिन नीत प्रीति पुरस्कृत, प्रीति पुरस्कृत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि शत्रुघ्न का जीवन भरत महाराज के लिए पूरी तरह समर्पित था। प्रीति अर्थात लव और पुरस्कृत अर्थात गिफ्ट। सो शत्रुघ्न's होल लाइफ वॉज अ गिफ्ट ऑफ लव फॉर भरत महाराज। प्रीति का भेंट था उनका पूरा जीवन केवल भरत महाराज के लिए। तो भेंट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले शत्रुघ्न पाप मुक्त थे, सिनलेस, और दूसरा उनके मन में प्रेम की भावना थी, ही वॉज लविंगली डिवोटेड, और तीसरा जब इस तरह का प्रेम मन में होता है किसी के प्रति और हमारा जीवन ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेम का भेंट स्वरूप होता है, तो इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि हम किसी भी इच्छा को टोकते नहीं, स्वामी की इच्छा को रोकते नहीं और बिना विचार किए तुरंत उनके इच्छा अनुसार कार्य करने लगते हैं। तो प्रीति पुरस्कृत अर्थात कोई गिफ्ट आइटम, तो मैं वही कल उदाहरण दे रहा था कि मान लो कोई गिफ्ट आइटम हो, मानो कोई गिफ्ट आइटम है आपके पास, तो अगर यहां पड़ा हुआ है और मैं उसको उठाऊं, है कि नहीं, अगर मैंने इसको यहां टेबल से हाथ में उठाया तो मेरे हाथ से उछलेगा नहीं ये कि कहां उठा रहा है मेरे को, उछल गया, ऐसा होगा क्या? इसको लेके मैं यहां रखूं तो वहीं रहेगा, इसको उठा के मैं वापस यहां रख दूं वापस वहीं बैठ जाएगा, कहीं पर भी मैं उठाऊं उसको तो मेरे हाथ से उछलेगा नहीं, अपने आप वापस कूद के नहीं आएगा। तो जिस तरह कोई पुरस्कार का या भेंट स्वरूप कोई वस्तु जिस दिशा में लेके जाओ और जहां पर रखा जाए वहीं पर स्थित हो जाता है, वैसे श्रेष्ठ शिष्य इस तरह होते हैं शत्रुघ्न की तरह कि बिना किसी रोक टोक के जैसा स्वामी कहे उस दिशा में चले जाते हैं, इनर्ट एंड एक्सेप्ट व्हाट एवर इज टोल्ड। तो ये बहुत ही ऊंचा स्तर है। तो इसलिए यह शत्रुघ्न की विशेषता बताई जा रही है कि बिना कुछ तर्क दिए, बिना कुछ विचार किए, जैसे कोई पुरस्कार का भेंट जो है जिस दिशा में ले जाओ उस दिशा में चला जाए, वैसे किसी व्यक्ति को हम कहें इधर आ, तो बोले नहीं नहीं नहीं, छूने जाओ तो पहले भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि अहंकार अंदर होती है। तो इसलिए शत्रुघ्न शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नित्य शत्रुघ्न, नित्य शत्रुघ्न अर्थात हमारे हृदय के अंदर बैठा नित्य वैरी मिथ्या अहंकार, उसका दमन शत्रुघ्न ने किया था। He had conquered his false ego, और इसीलिए उनके अंदर इतनी भावना थी कि जो भरत मुझे कहे निर्बाध रूप से मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूं बिना रोक टोक के। तो ये हम सभी के लिए पूजनीय आदर्श है, क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी चलती है कि कुछ बोले तो पहले सोचते हैं क्यों, ये क्यों बोला, मुझे ही क्यों बोला, इतने लोग थे उनको क्यों नहीं बोला, शायद कोई बात है लगता है, बाद में पूछूंगा, अकेले में निपटूंगा। तो इस तरह से अपना दिमाग चलता है क्योंकि अहंकार है। तो शत्रुघ्न इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो विनम्र थे, प्रेमी थे, हर प्रकार से कार्य संपन्न करने के लिए तैयार थे, क्योंकि अहंकार रूपी वैरी का उन्होंने पूरी तरह से दमन कर दिया था। तो इसलिए ये श्रद्धा की भावना तब विकसित होती है जब हम धीरे धीरे ये अहंकार से मुक्त हो जाएं। तो भरत महाराज को भी पता था कि मुझे इसको पूछने की आवश्यकता नहीं, जो मैं कहूंगा वो तुरंत कर देगा। तो ये भरत महाराज और शत्रुघ्न के बीच जो प्रसंग है बहुत महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली है और प्रेरणादायक है। तो जैसे कविचंद्र महाराज बता रहे थे कि अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो एक व्यक्ति को बुक दे रहे थे और बुक दे के कह रहे थे कि ये बुक पढ़ो, ये बहुत शक्तिशाली बुक है भगवद गीता। तो बोला इसमें क्या है? बोले इसको पढ़ोगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाओगे। तो बोले तो मेरा क्या होने वाला है इससे? तो बोले भैया मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी आएगी तो बचना है कि नहीं? तो तुरंत वो आदमी पुलिस को फोन करता है, पुलिस आ गई तो मुझे क्या बात है? तो बोलता है ये मेरे को मारना चाहता है, मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कविचंद्र महाराज को, पुलिस स्टेशन ले गए, इंटरोगेशन शुरू हुआ। तुमने मारने की धमकी दी? बोला मैंने मारने की कहा धमकी दी? क्या कहा तुमने? मैंने कहा जन्म मृत्यु का चक्र है और मृत्यु कभी भी आ सकती है। इतना कहने पर इसने आपको फोन कर दिया। तो पुलिस ने वो आदमी को बुलाया, बोला मूर्ख ये फिलॉसफी सुना रहा है, ये इतनी फिलॉसफी तो हम भी समझ रहे हैं, तू तो हमसे भी गया गुजरा है। और तुरंत वो गीता उठा के उसके हाथ में दी, बोल ले ले अभी इसको। और वो बेचारा गीता लेके गया तो पुलिस को थोड़ा क्रेडिट मिला गीता बेचने का, तो वो जितने पाप किए होंगे उससे थोड़ा बच गए होंगे अभी। तो बोले क्या कलयुग है, यहां पे लोगों के अहंकार की क्या कोई सीमा ही नहीं कि फिलॉसफी थोड़ा सा बताओ, उनको लगता है मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। बोला मृत्यु कभी भी आ सकती है तो कह रहा है मेरे को मार देगा ये। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में प्रचार करना अर्थात जान पर खेलना है। तो प्रताप रुद्र महाराज इतने शक्तिशाली राजा, लेकिन किस तरह विनम्र भावना उनकी है कि सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर इतनी श्रद्धा रखकर वो कह रहे हैं उनसे, पुनरपि इह तारा होले आगमन, एक बार देखी कोरी सफल नयन। तो दूसरा गुण उनका ये आता है, वो क्या? पुनरपि इह तारे होले आगमन, कि यदि महाप्रभु का यहां पर आगमन होगा, एक बार देखी, मैं एक बार बस चैतन्य महाप्रभु को देखना चाहता हूं और अपने नेत्रों को सफल करना चाहता हूं और मेरे मन में दूसरी कोई इच्छा नहीं। एक बार देखी कोरी सफल नयन, तो यह दूसरा गुण है लोभ या ईगरनेस, देखने की इतनी तीव्र इच्छा, दर्शन की लालसा, और यह दर्शन की लालसा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति इस भक्ति के मार्ग पर टिका रहता है। तो मैंने पहले भी इस बात का वर्णन किया है कि दीर्घ काल तक साधना भक्ति में स्थिर और अडिग रहने के लिए संबंध ज्ञान बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। और कृष्ण के प्रति जब संबंध ज्ञान हमारा शिथिल पड़ जाता है, तब फिर साधना की प्रक्रिया में हम डावाडोल हो जाते हैं। आते हैं भक्ति में, लेकिन जब कुछ समय आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे लगने लगता है कि ये मैं पता नहीं ये भक्ति क्यों कर रहा हूं, ये पता नहीं कृष्ण कब प्रकट होंगे, ये पता नहीं किस तरह से मैं जीवन भर ये कार्य कर पाऊंगा, ऐसे संशय मन में उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये भक्ति का मार्ग है मैराथन रेस की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है। आज आपका कुछ मैराथन हो रहा है क्या? पूना में सब जगह वो लोग अलग अलग लगा के रखे हैं। तो मैराथन में शुरुआत में हजारों लोग भागते हैं, देखा होगा आपने, और सब अलग अलग बिल्ला विल्ला लगाकर, बैनर लेके, अलग अलग टी शर्ट लगाकर, टोपी लगाकर, और स्टार्टिंग में सब पोज वोज करते हैं, सब लोग फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं, और 1-2 किलोमीटर निकलने के बाद देखते हैं कि चलो भाई कोई है क्या, कोई नहीं तो साइड से निकल जाते हैं और सीधा घर पे चले जाते हैं। और फोटो पेपर में अगले दिन, अरे तुम मैराथन में थे? हाँ वो क्या है, हर साल मैं भागता हूं, लेकिन कितने भागे वो नहीं बताते। बीच से उनको एक पगडंडी दिखी, उससे भाग गए, या फिर आके देखते हैं कि कुछ लोग पानी दे रहे हैं तो पानी वाले के पास खड़े हो जाते हैं, उसको बोले तू भाग अभी, बहुत देर पानी दिया तूने, क्योंकि थक जाते हैं, पसीना छूट जाता है। वैसे ही पहली बार जब महामंत्र जपना आरंभ करते हैं तो बिल्कुल रोमांच खड़े होते हैं, उल्लासित होते हैं, कीर्तन में लगता है सीलिंग फैन को छू लूंगा, सीलिंग फैन पे छू के अटक जाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही कुछ समय के बाद लगने लगता है कि हाथ में माला चलती है, नीचे बैठ के सीलिंग फैन को देखते रहते हैं, मुंह पे मंत्र नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में जब तक रुचि जागृत नहीं होगी, इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति में आना कठिन है, कृष्ण भक्ति में टिकना और अधिक कठिन है कि नहीं? प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। सुनने में बड़ा आसान लगता है और नए नए लोगों को हम ये बोल के हरे कृष्ण में लगा भी देते हैं, लेकिन एक एक शब्द इसमें बड़ा शक्तिशाली है। चैंट ये स्तर पर आना ही बहुत कठिन है, कोई भी मंत्र भी चैंट करना बहुत मुश्किल है रेगुलर बेसिस पे। चैंट हरे कृष्णा वो तो और कठिन है, क्योंकि उसके साथ साथ एक पूरा पैकेज रहता है, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो लोग वो सुन के परेशान हो जाते हैं, भाई मैं मंदिर आया, सत्संग आया, क्योंकि बॉस परेशान करता है, घर पर ये परेशान करते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, पड़ोसी परेशान करता है, सब जगह परेशान करता है। सोचा कम से कम साधु लोग कुछ आनंद देंगे, यहाँ आया तो सबसे पहले बोलते चाय छोड़ो, तो बड़ी परेशानी यहाँ पर भी है। तो हरे कृष्ण चैंटिंग मतलब और कठिन। और तीसरा तो सबसे खतरनाक, एंड बी हैप्पी। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, वो स्तर प्राप्त करना हो तो इतना आसान नहीं है। बिना अपराध के बहुत सोच विचार करके स्थिर होकर साधना भक्ति जब हम करेंगे तब ये प्रोसेस परफेक्ट है। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम ये कार्य करते करते यहां वहां भटक जाते हैं, मन भटक जाता है और फिर इस मार्ग के प्रति रुचि कम हो जाती है और हमको लगता है कि शायद ये चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी अमेरिकी लोगों के लिए था, शायद हमारे लिए नहीं लगता है, और अमेरिका में लोगों को लगता है शायद भारतीयों के लिए है लगता है। तो हर जगह लोग इस तरह विचार करते हैं, लेकिन वास्तव में ये नाम के अंदर, कथा के अंदर, ये पूरे प्रोसेस के अंदर जो शक्ति है वो तब उठ के बाहर निकलती है जब ठीक प्रकार से हम इसको पालन करें। तो यहां पर प्रताप रुद्र महाराज का कितना सुंदर उदाहरण है कि ईगर भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित, ईगरनेस, और ये प्रलोभ मन में होना चाहिए किस तरह कृष्ण का मैं दर्शन कर सकूं। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रताप रुद्र महाराज प्रश्न करते हैं कि क्या यहां पर किसी की कोई सेवा करनी है, चैतन्य महाप्रभु की किसी प्रकार से कोई सेवा हो तो बताइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु को रहने के लिए निवास स्थान चाहिए। निवास स्थान ऐसा होना चाहिए कि जगन्नाथ मंदिर के निकट, लेकिन थोड़ा हटकर भी, जिससे चैतन्य महाप्रभु एकांत में रह सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए। तो तुरंत प्रताप रुद्र महाराज काशी मिश्र को बुलाते हैं और काशी मिश्र को कहते हैं कि आपका ये घर है गंभीरा, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रहने के लिए व्यवस्था कीजिए। तो काशी मिश्र तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये सेवा का बहुत स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कबीरराज गोस्वामी कहते हैं, काशी मिश्र कहे अमे बड़ भाग्यवान, मोर गृहे प्रभुपादेर होबे अवस्थान, कि प्रताप रुद्र महाराज आपने मुझे सेवा का कितना सुंदर अवसर दिया है, मोर गृहे प्रभुपादेर होबे अवस्थान, आज हमारे घर पर चैतन्य महाप्रभु आकर निवास करेंगे और उनकी सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। और फिर प्रताप रुद्र महाराज नाना प्रकार से बाकी प्रसाद वगैरह की व्यवस्था करते हैं और सारे भक्तों के रहने की व्यवस्था वो करवाते हैं। तो ये तीसरा गुण प्रताप रुद्र महाराज वर्णन करते हैं, वो सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड। श्रद्धा और लालसा के साथ साथ सेवा भाव भी होने चाहिए। और जब हम भक्तों की ये न के न प्रकार न सेवा करते हैं तो उस किंचित सेवा मात्र से भगवान हमारी ओर आकर्षित हो जाते हैं और तब जाकर कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण और तीव्र होता है। तो ये प्रतापपुत्र महाराज इतने शक्तिशाली नरेश, लेकिन देखिए सेवा करने की कितनी इच्छा। जैसे एक राष्ट्र में, कौन सा तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद थाईलैंड में या कहां पर, भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उन्होंने एक विचार किया कि यहाँ के लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, शरीर के प्रति उनका बहुत ध्यान है। तो उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करके अनाउंस नहीं किया, उनके कुछ डॉक्टर भक्त लोग थे, चेक योर ब्लड प्रेशर करके एक बड़ा काउंटर लगाया, चेक योर बीपी, और कुछ दो तीन डॉक्टर अपना ड्रेस पहन के खड़े हो गए और बिल्कुल स्टेशन के पास उन्होंने काउंटर लगाया और लोगों की लाइन लग गई, 100-200 लोग खड़े हो गए। चेक योर बीपी फॉर फ्री करके था और फॉर फ्री बड़ा लिखा था, तो लोग खड़े हो गए बीपी लेने के लिए, और एक एक आदमी आ रहा है बीपी लेकर, और कुछ लोगों का बीपी ऊपर हो, तो भक्त लोग बोलते थे भाई बीपी ठीक है लेकिन ऑन द हायर साइड है। तो बोला अभी कम करने के लिए क्या करना, एक गीता है, गीता पढ़ो बहुत बढ़िया है, शांत हो जाएगा मन, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। तुरंत वो दो तीन गीता लेके जाते थे। तो इतनी लंबी लाइन लग रही थी लोगों की, तो वो लाइन में कई डॉक्टर लोग थे, और डॉक्टर बोलते चलो भाई हम भी थोड़ी सेवा करेंगे यहाँ पर, और डॉक्टर भी आके खड़े हो जाते थे, आपको कोई मदद चाहिए तो हम भी कुछ सेवा करेंगे। ऐसे कई कई डॉक्टर वहां केवल सेवा करने के लिए लोगों का बीपी लेकर भक्त बन गए। तो इस तरह थोड़ा सा अगर चांस मिले कहीं जुड़ने का, तो लोग देखिए कैसे भक्त बन जाते हैं। मैं जब इटली में स्पेन में गया था, तो वहां मालागा नाम का एक रिजॉर्ट है, तो मालागा में एक इंडियन फैमिली मुझे मिला, और वो एक बिजनेसमैन थे, और वो मुझे बता रहे थे कि वो भक्त कैसे बने। अभी वो दीक्षित हैं, भक्तिचारु स्वामी महाराज के शिष्य हैं। तो वो बता रहे थे कि सबसे पहले जब वो स्पेन में आए धंधा करने के लिए, तो केवल वो हिंदी जानते थे, स्पेनिश नहीं जानते थे, तो धंधा उनका हो ही नहीं रहा था, क्योंकि कोई भी उनको क्लाइंट मिलता, दूसरा कोई कॉन्टैक्ट मिलते, सीधा स्पेनिश में बोलना शुरू कर देते। और ये बेचारे थोड़ा इंग्लिश जानते थे और थोड़ी हिंदी जानते थे, तो दोनों के मिलाकर भी वो उनको कन्विंस नहीं कर पाते। तो बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन कर लिए स्पेनिश सीखने के लिए, लेकिन फिर भी इतना उनका कुछ स्पेनिश का ज्ञान बढ़ नहीं रहा था। तो भक्त लोग एक जगह बुक टेबल लगाए थे और स्पेनिश कृष्णा बुक का पूरा ढेर लगाया था। तो ये उनके पास आए और बोले क्या बेच रहे हो, बोले हम लोग कृष्णा बुक बेच रहे हैं, ये कृष्णा है, बोले तो पहले मैं भारत से हूँ, कृष्णा भी है, लेकिन कौन सी भाषा में है, बोले इंग्लिश में भी है स्पेनिश में भी है, और स्पेनिश में भी है तो बहुत बढ़िया है। तो ये कैसे स्पेनिश है, बोले बहुत सरल स्पेनिश है, इसको पढ़ोगे स्पेनिश भी सीख जाओगे, तो यही सुनना चाहते थे वो। तो बोले अरे ये तो मेरे मन की बात जानता है। तो तुरंत एक इंग्लिश और स्पेनिश दोनों लेके गए और पूरा कृष्णा बुक पहले इंग्लिश पढ़ते थे, वो वाला बराबर जो लाइन है स्पेनिश में पढ़ते थे, और अलग अलग वर्ड्स का वोकैबुलरी शीला प्रभुपाद के बुक से लेकर वो स्पेनिश सीखे। बोले वो कृष्णा बुक पढ़ के मैं स्पेनिश खटाखट बोलने लगा, और जब तक मैं पूरा कृष्णा बुक समाप्त किया स्पेनिश तो सीख गया, लेकिन सबसे अधिक मैं जान गया कि अब मैं जीवन जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में जाऊं तो यमदूतों की भाषा सीखनी होगी, इसलिए मुझे अपनी दिशा बदलनी है। और तुरंत वो मंदिर से जुड़ गए और भक्त बन गए। तो बोले मैं आया था तो उस भाषा सीखने के लिए, लेकिन कहां कृष्ण से जुड़ गया। तो इस तरह हमें भी प्रचार के मिशन में अलग अलग लोगों को जोड़ना है किसी न किसी प्रकार से, चाहे उनका कोई संबंध हो ना हो, लेकिन केवल कृष्ण के साथ वो जुड़ जाएंगे तो अपने आप उनका उद्धार होगा। जैसे मैं उस दिन बता रहा था, प्रभुपाद मिश्रा के स्टूडियो में गए थे, हाँ डॉक्टर मिश्रा न्यूयॉर्क में, योगा स्टूडियो था उनका, उनका दूर दूर से भक्ति से कोई संबंध नहीं, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं उनको यू शुड हेल्प मी इन स्प्रेडिंग लॉर्ड चैतन्यज मिशन, आपके आपका जो योगा स्टूडियो है इसको भी हम सेंटर बना देते हैं, महाप्रभु का संदेश यहाँ पर हम प्रचार करेंगे। तो बोले घबरा गया, क्या बात कर रहे हो भाई, तो मेरा अच्छा खासा योगा चल रहा है, क्यों उसको भंग कर रहे हो, मुझे क्यों कह रहे हो? बोले बिकॉज योर सरनेम मिश्रा एंड लॉर्ड चैतन्य फादर नेम जगन्नाथ मिश्रा, तो दोनों का बहुत क्लोज कनेक्शन लग रहा है मुझे, शायद इसलिए आपका नाम मिश्रा है, क्योंकि लगता है कि महाप्रभु के मिशन में आपको योगदान दोगे, चलो शुरू करो आप। तो बिल्कुल डर गया वो, क्योंकि दूर दूर तक भगवान भगवान से दूर रहता था वो, लेकिन प्रभुपाद के प्रति उनका प्रेम था, क्योंकि प्रभुपाद उनका बड़ा प्रेम से सेवा करते थे। जब वो बीमार थे तो प्रभुपाद स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर प्रसाद उनको खिलाया। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद ने प्रचार करते समय ऐसे ऐसे जीवों को इस प्रचार के मिशन में संलग्न किया जिनका अपने आप में भक्ति करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन किस तरह किस भाव को वो कृष्ण के साथ जोड़ सके ये देखें। तो ये सेवा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु लौट के आते हैं जगन्नाथपुरी, सभी भक्तों के साथ प्रेमालाप करने लगते हैं, प्रेमपूर्वक भेंट करने के पश्चात स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि आते हैं, ब्रह्मानंद भारती इत्यादि आते हैं। अब ये अध्याय समाप्त होने के पश्चात ग्यारहवां अध्याय आता है चैतन्य महाप्रभु का बेड़ा कीर्तन पास टाइम्स। तो अब प्रताप रुद्र महाराज के विषय में वर्णन फिर उस अध्याय में आरंभ होता है। तो अब प्रताप रुद्र महाराज पुनः सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रश्न कर रहे हैं कि भाई कुछ हुआ क्या। तो अब यहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि महाप्रभु ये प्रताप रुद्र महाराज आपसे भेंट करना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब सुनते हैं तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विरक्त सन्यासी अमार राज दर्शन स्त्री दर्शन सम विशेर भक्षण। सार्वभौम भट्टाचार्य आप मुझे राजा से भेंट करने की बात करते हो, ये राजा का भेंट करना मतलब जानबूझकर विषपान के तुल्य है, ये राजा का मैं कभी भेंट नहीं करूंगा, ये संभव नहीं, क्योंकि मैं विरक्त सन्यासी हूं। तो प्रभुपाद जी यहां वर्णन करते हैं अपने तात्पर्य में कि अ सन्यासी शुड नेवर सी अ मैन और वुमन फॉर मटेरियल बेनिफिट, भौतिक लाभ के लिए कभी सन्यासी को किसी पुरुष या स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, उनसे भेंट नहीं करनी चाहिए, केवल उनका उद्धार करने हेतु उनसे भेंट करें। तो इसलिए कल मैं वर्णन करता सुंदरकांड से, हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और लंका नगरी के सौंदर्य को देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति चकाचौंध हो जाता कि हर जगह सोना ही सोना है, कितना आकर्षक है। तो लंका नगरी उस समय रावण ने इस तरह सजाई थी, संवारी थी कि कोई सामान्य व्यक्ति तुरंत उसको देखकर आकर्षित हो जाता, लेकिन हनुमान जी को अपना मिशन ज्ञात था, यहां पे आया हूं केवल सीता देवी से भेंट करने। तो वैसे प्रत्येक प्रचारक को चाहिए कि प्रचार में जाए तो बाहरी शरीर इंद्रिय मन इत्यादि के सब विचारों से आकर्षित न हो, सीधे उस व्यक्ति की आत्मा तक पहुंचकर प्रभु राम का संदेश उस आत्मा को दे, आध्यात्मिक स्तर पर प्रचार करे। अन्यथा बाहरी भौतिक रूप से बाकी जितने उपाधियां इत्यादि की ओर आकर्षित हो गए तो वास्तविक मिशन कि किस तरह प्रभु का संदेश उस जीव को देना है उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए यहां पर ये चेतावनी दे रहे हैं विरक्त सन्यासी अमार राज दर्शन स्त्री दर्शन सम विषेर भक्षण, ये विष भक्षण के समान है, ये बहुत खतरनाक। इसलिए कहते हैं प्रभु को है तथापि राज काल सर्पाकार काष्ठ नारी स्पर्श ये इच्छे उपजे विकार। तो कह रहे हैं ये राजा मेरी दृष्टि में पता है क्या है, महाभयंकर शक्तिशाली विषधर भुजंग की तरह है, भयंकर सर्प की तरह है जो कभी भी डस ले। काष्ठनारी स्पर्श या इच्छे उपजे विकार, जहां तक मेरी चेतना का प्रश्न है, कोई काष्ठ का बना पुतला भी मेरे चित्त को आकर्षित कर सकता है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और प्रभुपाद क्या सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, हाउएवर क्वालिफाइड अ मेटीरियलिस्ट मे बी, ही इज नो बेटर देन अ स्नेक। चाहे कितना भी सुयोग्य भौतिकवादी क्यों ना हो, वो सर्प से अधिक उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, वो सर्प के समान ही है, काला सर्प, बड़ा भयंकर। तो बाहर का कोई व्यक्ति सुनेगा उसको झटका लगेगा, ये क्या है भाई, इतना मैं सुशिक्षित हूं, इतना कुछ कमाया है, इतना कुछ किया है, और हमको ये लोग सर्प कह रहे हैं। और आपसे भी ये अपेक्षा नहीं की जाती कि आप प्रचार में जाके लोगों को ऐसा कहो, ए सर्प इधर आ, जरा जप कर, समझे क्या, केवल फुफकार मार रहा है रोज रोज। पता है क्या जीवन का लक्ष्य क्या है, नाम लो तो हरि नाम कृष्ण के समान तुम जैसे कालिया के ऊपर नाचेंगे, तब जाके तुम शुद्ध हो जाओगे। इस तरह हम प्रचार करेंगे तो कोई कोई आएगा ही नहीं। तो ये हमारे सावधानी के लिए है कि प्रताप रुद्र महाराज को प्रयोग करके भगवान ने इस तरह से उनके साथ स्ट्रिक्टनेस दिखाया कि कोई सामान्य व्यक्ति कब की उसकी छुट्टी हो गई होती। तो प्रभुपाद कहते हैं, वन शुड नॉट ट्रस्ट हिज माइंड विच इज सो फिकल एंड इट कैन गिव वे टू एनिमीज एनी मोमेंट। ऑल्दो द माइंड मे बी मर्ज्ड इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, वन शुड बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद इट, जस्ट एज वन इज केयरफुल इन डीलिंग विद अ स्नेक। तो सर्प का एक दूसरा तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं, राज काल सर्पाकार। प्रभुपाद कह रहे हैं, कई बार कुछ वर्ष भक्ति करने के बाद, आरंभ में हम लोग मन से बहुत सतर्क रहते हैं, अरे मन वैरी है, मन वैरी है, मन खतरनाक है, लेकिन कुछ समय के बाद अपने को लगता है कि अरे ये मन ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है, लगता है अभी नॉर्मल हो गया है, लगता है मेरा शिष्य बन गया वो। और फिर हम लोग उसको अवहेलना करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा ध्यान भटकता है, वी स्टार्ट neglecting। तो प्रभुपाद प्रश्न कर रहे हैं कि कोई भयंकर कोबरा होगा तो कोबरा को आप कभी भी बिना सावधानी के उसके साथ आदान प्रदान करोगे क्या? चाहे कोबरा कितना भी समय आपके साथ क्यों ना रहे, एक नजर आपके हमेशा उस पर रहेगी, है कि नहीं? चाहे एक साल भी कोबरा को पाल लिया और उसका विष अंदर से नहीं निकाला, तो उसको बगल में रख के सोते समय भी डर लगेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल कोबरा ही है कि नहीं? तो उसके मन में जो विषैला जो भावना है द्वेष का और जिह्वा में विष है, वो कभी भी डंक मार सकता है। वैसा ही अपना मन है, एक क्षण के लिए ध्यान भटका तो बस तुरंत हम फंस जाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहां वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमको और सावधान होना चाहिए, क्योंकि माया देवी और सतर्क हो जाती है। जैसे जेल है और जेल में कैदी हैं और जेल में कितना सारा सायरन लगा हुआ है, वो सायरन कभी बजेगा क्या? नहीं बजेगा। जब तक हम जेल के अंदर बैठ के भोजन कर रहे हैं, जब तक हम जेल के सारे कार्य गतिविधियां कर रहे हैं, तो तब तक वो सायरन कभी नहीं बजेगा। और हम भी जेल में घूमते घूमते, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जगह है यहां पर, यरवड़ा जेल में हम गए थे प्रोग्राम के लिए बहुत साल पहले, वहां के लोग ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, पता है क्या, जो शहर के लोग भी नहीं खाते। तो एक आदमी मेरे को मिला था, वो 20 साल के बाद रिहा हो रहा था, वो कह रहा है जाते जाते मेरे को दुख हो रहा है, यहां छोड़ के जा रहा हूं, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं यहां पर, अब मैं गांव में जा रहा हूं, किसी को पहचानता भी नहीं अभी, और वापस फिर जेल से आया हूं तो वो भी बदनामी होगी, कम से कम जेल के अंदर मेरा बहुत सम्मान हो रहा है आजकल, सीनियर सिटीजन का स्टेटस मिल गया मेरे को यहां पे। 20 साल रहने के बाद कोई नया आदमी आता है, मेरा पैर पड़ता है और मैं आशीर्वाद देता हूं, जेल में जीते रहो मेरे समान। तो इतना सब सम्मान मिल रहा है, वो सब छोड़ना पड़ेगा। तो देखो कितनी माया प्रबल है कि जेल के अंदर भी व्यक्ति अपना अपना एक सेटिंग कर लेता है, अहंकार अपना एडजस्ट हो जाता है उसके हिसाब। तो फिर जब जेल से कोई भागने का प्रयास करेगा तब जाकर सारे घंटियां टन 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 बजने लगेंगे, सारे लाइट्स चलने लगेंगे और जितने बाकी सैनिक लगे हुए हैं वो सब गोलियां चलाने लगेंगे। तब तक चाहे कितना भी समय रहो, सैनिक भी स्माइल करेंगे, हाथ मिलाएंगे, बंदूक उनकी वहीं रहेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन जरा भाग के दिखाओ, जैसे ही भागने का प्रयास करोगे जेल के अंदर जितनी सत्ताएं हैं सब सतर्क होकर आपके पर हावी हो जाएंगी। तब पता पड़ेगा अरे ये तो बड़ा शांत जगह नहीं है। अच्छा ये इतने समय से भोंपू दिखता था, आवाज करता है, ये मालूम नहीं था ये क्या है। वो तब पता पड़ता है जब कोई भागने का प्रयास करे। वैसे जब तक हम शांति से माया देवी की गोद में लेटे हैं तब तक माया देवी मुस्कुरा रही है कि नहीं? हम भी ऊपर देख के माया देवी को देखते, माया देवी देखते से पड़े रहे बेटा, लेटे रहे कोई बात नहीं। और हमको लगता लाइफ कितना पीसफुल है, मैं हंस रहा हूं वो हंस रही है, माया देवी मुझे देख के हंस रही है, मैं उनको देख के हंस रहा हूं, तब तक अच्छा लगता है। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहते जीव जागो जीव जागो, तो बोलता चलो भाई सो गया, अब ये लोग बोल रहे जागो तो चलो जागता हूं। जब जागने का प्रयास करोगे तो माया देवी का स्माइल चला जाता है और तुरंत दोनों हाथ गले में आ जाता है। तब तक हाथ सर फेराती रहती है, सो जा बेटा सो जा, और जैसे ही उठने का प्रयास करोगे फिर दबा देगी। तब लगता है अरे ये तो खतरनाक है, अब तक पता नहीं था इसकी शक्ति क्या है। तो उसकी सारी शक्ति और पूरा प्रचंड वेग तब दिखेगा जब उसके चंगुल से छूटकर भागने का प्रयास करो। तब जाकर पूरे स्टेट का पूरे जेल का फोर्स कितना है और कितने सैनिक कहां कहां हैं तब मालूम पड़ेगा जब एक व्यक्ति भागने का प्रयास करेगा। तब तक दूर दूर तक कोई सैनिक दिखते भी नहीं, और दिखते भी है तो खर्राटे मारते हुए कुछ लोग, लेकिन जब सायरन बजता है सब भागते हैं। जैसे एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया था कि पंजाब के एक जेल से 10 कैदी फरार हो गए, सब लाइफ कन्विक्ट। जब कैदी फरार हुए तब वो लोगों ने उनका कैबिन देखा, तो कैबिन के अंदर वो लोग पाए कि पूरा एक सुरंग खोदा था, टनल 4 किलोमीटर दूर, और 4 किलोमीटर दूर वो बाहर निकला सुरंग। तो सोचो कितना समय लगा होगा, कितना उत्साह, कितना निश्चय और कितना धैर्य लगा उसमें। क्यों? क्योंकि जेल से भागना था। और जब पुलिस ने छापा मारा तो देखा एक पूरा सूटकेस भर के बुक्स था, और बुक्स में सब टाइटल क्या थे, ग्रेट एस्केप स्टोरीज फ्रॉम जेल, ग्रेटेस्ट जेल एस्केप स्टोरीज इन हिस्ट्री, इतिहास में सबसे बड़े बड़े जितने जेल से भागे फरार कैदी उन सब की कथाएं। तो उन लोगों का रोज भागवत क्लास होता था, कोई खुदाई करते करते बोर हो जाए तो दूसरे इंस्पायर करते थे, अरे पता है क्या 1942 में वर्ल्ड वॉर के समय फलाना फलां कैदी क्या भागा, खोदो अभी। हाँ ठीक, तुम कहते हो तो खोदता हूं भाई इतने साल के बाद, क्योंकि उत्साह क्षीण हो जाता है। उसके बाद उत्साह बनाए रखने के लिए कथा सुननी पड़ती है कि चलो भाई पहले भी बहुत लोग निकले हैं जेल से, तुम भी निकल सकते हो, सो मत जाओ, जागो। तो जिस तरह ये जेल के कैदी खुदाई कर करके निकले, वैसे खुदाई करने के लिए हमारे हाथ में माला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये महामंत्र के जाप से माया देवी के दुर्ग से हम सुरंग खोदकर बाहर निकल सकते हैं। और केवल खुदाई करना है, निकालने का काम भगवान करते हैं। भगवान देखते हैं खोदा क्या, काफी खोदा, चलो भाई भगवान निकलते, चल भाई वो निकलने का रास्ता उधर से नहीं, इधर से निकल, चल भगवान निकाल देते हैं। तो प्रयास करना है हमको, बाकी करने वाले भगवान है और कुछ नहीं। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि कभी ये विचार न करें कि अब काफी मैं भक्ति कर लिया, मन मेरे वश में आ गया, अब मैं आराम से जो चाहिए कर सकता हूं, थोड़ा मैं यहां वहां देख सकता हूं। बहुत समय तक मैं बिल्कुल, उस दिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, ये चार नियम के चार दीवार के बीच बहुत समय रह गया हमें, मांसाहार नहीं, स्त्री संग नहीं, जुआखोरी नहीं और नशापान नहीं, ये चार दीवार के अंदर मैं अटक के बोर हो गया। बाहर क्या चल रहा है थोड़ा देखने के लिए कम से कम एक विंडो तो मिले, और ऐसा सोचकर हम कम से कम थोड़ा देखने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा फंस जाएंगे कि उसकी कोई सीमा नहीं। इतना साल हो गया क्रिकेट भी देखा नहीं, थोड़ा वर्ल्ड कप देख लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, एक हाथ में माला रहेगा दूसरे हाथ में रिमोट रहेगा, जैसे इंडिया हारती जाएगी मैं माला और बढ़ाऊंगा, ये सत्य बात है, कई भक्त लोग करते हैं ऐसा, नाम नहीं बताऊंगा। पूना में है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बहुत जगह है। बिल्कुल अगले दिन आते हैं मंदिर में, मायूस चेहरा रहता है, कभी सुखी रहते हैं, कभी कहते हो कृष्णा कितने कृपालु हैं, बोले क्या हो गया भाई, जीत गए हम। 1999 में हम लोगों का साउथ इंडिया यात्रा हो रहा था, अहोबलम और सिम्हाचलम, और वहां उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था, और लोग बिल्कुल नरसिंह आरती गा रहे थे जोर जोर से, नरसिंह देव बचा लो भारत को। तो देखिए इतना सब करने के बाद भी जो हमारी पुरानी यादें हैं उनसे छूट पाना इतना आसान नहीं है, है कि नहीं। भले मंत्र भी जपते रहें, भक्ति भी करते रहें, लेकिन दूर से हम कुछ ध्वनि सुनते हैं तो लगता है ओह कुछ करना चाहिए। जैसे राधानाथ महाराज फ्लाइट पर थे, जा रहे थे बेलगाम, और वो फ्लाइट में पूरा इंडियन क्रिकेट टीम था, और उनके साथ उनके सेवक भी थे, और वो सेवक बड़े खुश थे देखकर, वो बड़ा सौभाग्य आज हमारा, महाराष्ट्र का तो सौभाग्य है ही, लेकिन और 11 हमारे भूतपूर्व देवतागण वो भी साथ में सवार हैं। फ्लाइट उतरा बेलगाम में, महाराज लास्ट में उतरते हैं, पूरा बेलगाम के कांग्रेगेशन बहुत लोग आए थे हार वार लेके, और भारत का क्रिकेट टीम उतरा, और मृदंग करताल कीर्तन हो रहा है और हाथ में हार है, तो इनको लगा वाह ये अलग टाइप का रिसेप्शन है हमारे लिए आज, और सब लोग अपना गला लेके दे रहे थे, लगाओ भाई, एक भी हार नहीं पड़ा उनके ऊपर। फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले ये क्या है, लगता है बेलगाम में क्रिकेट प्रेमी नहीं है। तो वो निकल गए, निकल के पीछे मुड़ के देख रहे थे कि किसके लिए ये हार, फिर महाराज आए और सब 25-30 हार उनके ऊपर गिरा। तो फिर वो आगे गए तो सामने एक दूसरा प्लेयर था अजय जडेजा, आप लोगों ने शायद नहीं सुना, आप लोग तो डिवोटी हो नहीं सुने होंगे। तो वो जडेजा महाराज को बोलता है मैं आपका थोड़ा, इतना हार देखकर उसको भी लगा भी कुछ करना चाहिए, तो बोला आपका थोड़ा मैं सूटकेस उटकेस उठा देता हूँ। तो सूटकेस उटकेस उठाया, रिटर्न फ्लाइट में साथ में था, बहुत सेवा हुआ की, और इतनी सेवा करने का परिणाम था कि 6 महीने में बैन हो गया वो हमेशा के लिए। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद् धनम्, शनै भी नहीं तुरंत। ओ बेचारा अब पूरा फ्री है मंत्र जपने के लिए, हरे कृष्ण जपने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन शायद उसको अभी तक कनेक्शन पता नहीं होगा कि भगवान ने क्यों करवाया, जिससे कि वो अपना पूरा समय क्रिकेट के मैदान में कूदने के बदले यहाँ भक्तों के संग बिता सके। तो ये सब भावना मन में आती है कि थोड़ा पिक्चर देख लें, थोड़ा टीवी देख लें, एक आध कुछ नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख लें, है कि नहीं, देश प्रेम का कोई पिक्चर देख लें, भगत सिंह इतना चलता था उस समय, एक व्यक्ति बोला संडे फीस्ट में नहीं आऊँगा भगत सिंह देखूंगा, तो मैं बोला संडे फीस्ट आओ यहाँ भी हम लोग भगत सिंह दिखाते हैं, बोले अच्छा कैसे, बोले बहुत सारे भगत है सब सिंह करते हैं हरे कृष्णा। ये भी भगत सिंह ही है, तो बोला देश प्रेम का पिक्चर है इसलिए मैं देख लेता हूँ थोड़ा, तो कोई बात नहीं थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा जानकारी होगी, और नहीं तो लोग उल्टा पुल्टा कुछ प्रश्न करते हैं मैं जान नहीं पाता, इसलिए जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा मैं जनरल बातें देख लेता हूँ, लेकिन वो जनरल नॉलेज लेने के लिए जाते हैं और ऐसा मग्न हो जाते हैं, एक दो घंटा निकल जाता है। तो इसलिए महाप्रभु यहां कह रहे हैं, तथापि राजा काल सर्पाकार काष्ठ नारी स्पर्श यैच्छे उपजे विकार। अपना मन काले नाग की तरह है, कभी भी फुफकार मार के डंक मारेगा। कभी ये ना सोचे 10 साल हो गए 20 साल हो गए तो अब थोड़ा रिलैक्स हो सकता हूं। अर्जुन कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि कब तक चलेगा भाई ये संघर्ष ये युद्ध। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कहने को तो दुख हो रहा है लेकिन कह देता हूं, शक्नोति है वह यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणा। जब तक शरीर नहीं छोड़ोगे ना तब तक युद्ध चलेगा। ये काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त ससुखी नर। ये काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेग है वो निरंतर सताएगा तब तक, जो उसको वश में कर लिया सहयुक्त ससुखी। तो इस तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं। तो इस तरह रामानंद राय, अब सार्वभौम भट्टाचार्य वापस लौट के आ जाते हैं। अब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि किस तरह प्रताप रुद्र महाराज की मुझ पे कृपा हुई है। तो प्रभुपाद कहते हैं, महाप्रभु का स्ट्रिक्टनेस देखो। चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्टनेस इज सो मच दैट ही रेफ्यूज टू सी द किंग ऑफ द लैंड। ही रेफ्यूज टू सी द किंग इन स्पाइट ऑफ हेवी रिक्वेस्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ मोस्ट इंटीमेट एसोसिएट सार्वभौम भट्टाचार्य। इतने अंतरंग पार्षद सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जरा भाई प्रतापरुद्र महाराज को दर्शन दे दीजिए। और ऐसे नहीं कि कोई जीव को, महाराज प्रतापरुद्र जो कि राजा है उनको दर्शन दीजिए। फिर भी महाप्रभु अड़ गए, बोले नहीं नहीं देना। तो यह हम सभी के लिए शिक्षा हेतु है। और जैसे प्रसंग बढ़ता है तो बहुत ही शक्तिशाली और मार्मिक प्रसंग है। तो ये एक एक गुण इसमें प्रतापरुद्र महाराज के उभर के निकलते हैं, तो ये देखने योग्य है। तो आगे वर्णन आता है कि अब रामानंद राय आके कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि भगवान, मैं प्रतापरुद्र महाराज से निवेदन किया कि मुझे सेवानिवृत्त करके जगन्नाथपुरी में हमेशा के लिए रहने की अनुमति दीजिए। तो पता है प्रतापरुद्र महाराज ने मुझे क्या कहा? तोमार ये बर्तन तुम्हें खाओ से बर्तन, निश्चिंत होइया भज चैतन्य चरण। प्रतापरुद्र महाराज ने कहा कि मैं तुमको वॉलंटरी रिटायरमेंट देता हूं और तुम्हारा अभी का जो करंट पगार है वो लेके आप जीवन भर महाप्रभु की सेवा करते रहो। जगन्नाथपुरी में बस कीर्तन करो, कथा करो, महाप्रभु की सेवा करो, जो अभी तुमको पगार मिल रहा वही मिलेगा। तो देखिए प्रतापरुद्र महाराज ने रामानंद राय की भक्ति को आगे बढ़ने के लिए कितना प्रयास किया। तो ये उनका चौथा गुण है और वो है नॉन एनवी, द्वेष से विहीन। अरे जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को भक्ति में विशेष कृपा मिल रही है और वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो जब मन में द्वेष होता है तो मन करता है कि उसको खींचो। अरे अकेले क्यों जाते हो, संग में चलो, हमको भी साथ लेके चलो, अकेले नहीं जाना चाहिए आगे, ये द्वेष है। तो यहां रामानंद राय तो प्रतापरुद्र महाराज के अधीन है। रामानंद राय केवल मंत्री है, गवर्नर है, प्रतापरुद्र महाराज राजा है। और सब जगह यह बात प्रचलित है कि चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को कितनी कृपा दी। ऐतिहासिक तत्वज्ञान की चर्चा हुई है रामानंद राय और प्रतापरुद्र महाराज के बीच में। इतिहास इस बात का सनातन काल के लिए साक्षी है। इतिहास के पन्नों में रामानंद राय प्रविष्ट हो गए हैं। तो ये सब जानकर द्वेषी व्यक्ति का दिल कितना जलेगा। और प्रतापरुद्र महाराज तो रामानंद राय के बॉस हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके अथॉरिटी हैं, उनके ऊपर बैठे हैं, और अपने अधीन किसी व्यक्ति को इतनी कृपा मिल गई और वो तो आकर मुझे रिपोर्ट करता है और मैं जा रहा हूं महाप्रभु को, महाप्रभु कह रहे हैं कि ये विषयी है। अरे रामानंद राय भी तो गवर्नर ही था, है कि नहीं? वो भी थोड़ी केवल कथा कीर्तन करता था, वो भी अपने जीवन में टैक्स भरवाता था, बाकी पॉलिटिक्स करते थे, सब कुछ करते थे। मैं केवल एक लेवल ऊपर हूं, उनको विषयी नहीं कहा, उनको प्रेमी रसिक भक्त बोल के एक सप्ताह बैठ के कथा कर दिए, और मैं जब जा रहा हूं कृपा के लिए तो मुझे कह रहे हैं कि विषयी है, सर्प है, कोबरा है, ये है, वो है, दुनिया भर की गाली दे के लटका दिए। ये क्या चल रहा है भाई, ये तो बड़ा अन्याय है। अगर ऐसा है तो मुझे ही रामानंद राय के साथ कुछ डील करना होगा, उसको भी इतनी कृपा मिल गई, वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा मैं भी उसको नीचे उतारता हूं। ऐसा मन में विचार आता है जब द्वेष की भावना होती है, क्योंकि द्वेष से मुक्त है। प्रतापरुद्र महाराज कह रहे हैं, अरे रामानंद राय को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है और महाप्रभु उनका संग और चाहते हैं, चलो मैं अपनी ओर से ऐसी व्यवस्था करता हूं कि शांतिपूर्वक जीवन पर्यंत वो महाप्रभु की सेवा जगन्नाथपुरी में बैठकर कर सके। इस तरह लो पगार, जो अभी मिल रहा है वही पगार लो। अगर द्वेषी होते तो कहते रामानंद राय को ट्रांसफर कर दो आसाम, भेज दो उनको, उल्फा के साथ लड़ते रहे वो, या भेज दो कश्मीर। तो जब द्वेष होता है तो इस तरह मन में अलग अलग विचार चलता है। तो देखिए महत्वपूर्ण बात, महाप्रभु के अंतरंग सदस्यों का व्यवसाय क्या था, महाप्रभु के टॉप टॉप जितने भक्त थे उनका प्रोफेशन क्या था, पॉलिटिक्स। प्रतापरुद्र महाराज पॉलिटिशियन, रामानंद राय पॉलिटिशियन, सनातन गोस्वामी पॉलिटिशियन, रूप गोस्वामी पॉलिटिशियन, रघुनाथ दास गोस्वामी सीईओ, मतलब वो भी बहुत कुछ खेल खेलना पड़ता है। उनका दैनिक जीवन केवल पॉलिटिक्स, 24 घंटा यही कर रहे हैं, पूरे 10 के 10 उंगलियां पॉलिटिक्स के अंदर। राजा मतलब क्या, कौन अभी सत्ता पे आएगा, कौन आक्रमण करेगा, कैसे गेम खेलूं, उसको नीचे करने, उसको उल्टा करने, पुल्टा करने, दिन रात दिमाग में यही चलता है। गवर्नर मतलब टैक्स वसूल करना, ऐसी थोड़ी कोई लाला के टैक्स देगा, तो कैसे निकलवाना, उसको कैसे दम दूं, उसको कैसे ये करूं, दिन रात। और सनातन गोस्वामी तो बिल्कुल नवाब हुसैन शाह के फेवरेट, प्रधानमंत्री बना के रखा था उनको, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, और वो भी मुसलमानों के बीच वो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, तो सोचिए बाकी कितने लोग उनको खींचने के लिए क्या क्या करते होंगे। तो उनका जो पूरा जीवन निकला है पॉलिटिक्स में, तो लोग कहते हैं आई कांट चेंज माई नेचर, क्योंकि मैं भक्ति के पहले ऐसे ऐसे था, तो इसलिए पहले से मेरे को गाली देने की आदत है, तो इसलिए अभी भी मैं भक्तों को देखता हूं तो कभी कभी दे देता हूं, प्रेम से देता हूं, लेकिन वो पहले मैं बहुत गाली देता था, इसके लिए क्या है, अभी भी वो एक मेरा नेचर है, पहले का कंडीशनिंग है ना, वो इसलिए आ जाता है बाहर। तो कहते अरे तुम चोरी क्यों किया भाई, वो नहीं पहले मेरा थोड़ा आदत था, वो कभी कभी निकलता है, वो माखन चोर भी है वैसे कृष्ण, तो उनका थोड़ा यहां वहां हेरा फेरी हो जाता है। तो पहले की आदत को लेकर अगर हम चलें तो महाप्रभु के अंतरंग सदस्यों के पास कितना एक्सक्यूज था, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन, उनका व्यवसाय था केवल पॉलिटिक्स राजनीति। लेकिन ऐसे अंतरंग पार्षद जिनका जीवन राजनीति में गया, एक बार महाप्रभु से जुड़ गए और भक्तों के संग में आ गए, और जब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, प्रतापरुद्र महाराज, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, ये सब एक साथ सामूहिक रूप से महाप्रभु के संगी बन जाते हैं, और वो पूरा भक्तों का समूह जब चलता है, वहां राजनीति का लेश मात्र गंध भी नहीं। यह है गौरलीला। इसीलिए गौर लीला में मिठास है, क्योंकि जो लोग उस लीला में अपना रोल अदा कर रहे हैं वो लोग इस बात को समझते हैं, ना हम विप्रो न च नरपतिर ना पी वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपीर भरतूर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। ये चेतना उनकी है, तब जाकर ऐसे भक्तों के संग में प्रेम पूर्वक आदान प्रदान कर पाते हैं, तब जाकर उनके कीर्तन में, उनके कथा में, उनके लीला क्रीड़ा में, आदान प्रदान में इतना आनंद है, इतना मिठास है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमको इस्कॉन संस्था दी है। ये इस्कॉन संस्था जो हमको प्रदान की है ये एक शुरुआत है। कई बार हमको लगता है दीक्षा इनिशिएशन मतलब अंत हो गया, भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त कर लिए, मेरी दीक्षा हो गई। अरे शब्द देखो, इनिशिएशन, इनिशियल मीन्स अभी शुरू हुआ है। तो इसलिए किसकी शुरुआत? शुद्धिकरण की शुरुआत। अर्थात हमको चलना है इस मार्ग पर, लेकिन हमारा आदर्श क्या है वो लेके चलना है। अंधाधुंध चलते रहेंगे तो भटक जाएंगे। लोग कहते हैं अरे ये सब सुनकर कॉम्प्लेक्स आता है, ऐसा थोड़ी कोई हो सकता है। नहीं, लेकिन जिस दिशा में जानी है उसको तो देखो। तो ये कितनी बढ़िया बात है कि ऐसे शक्तिशाली बुद्धिमान पंडित लोग और जिनका इतना अनुभव है राजनीति का, लेकिन एक दूसरे के साथ भक्तों के संग में राजनीति नहीं कर रहे। अमिच्छार योग्य नहीं तार दर्शने, तारे यही भज तारे सफल जीवने। और ऊपर से प्रतापरुद्र महाराज कह रहे हैं अमिच्छार, मैं तो बहुत ही निकृष्ट श्रेणी का व्यक्ति हूं, योग्य नहीं तार दर्शने, दर्शन करने की योग्यता नहीं। कह रहे हैं तारे यही भजे, जो महाप्रभु का भजन करेगा तारे सफल जीवने, उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये एक और गुण है, नॉन एनवी तो है ही, लेकिन साथ साथ ह्यूमिलिटी नम्रता। कह रहे हैं रामानंद राय और बाकी सब भक्त लोग जिनको दर्शन हुआ महाप्रभु का, वो सब बहुत प्रगतिशील भक्त हैं, मैं योग्य नहीं हूं महाप्रभु के दर्शन करने का, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो ये नम्रता है, क्योंकि हमारे अंदर नम्रता नहीं तो जब हमको कोई उपाधि या उपलब्धि या कोई कृपा प्राप्त नहीं होती जो दूसरों को प्राप्त होती है, हमारे मन में ये नम्र भावना के बदले क्रोध की भावना जागती है, मुझे क्यों नहीं मिला भाई, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा अन्याय क्यों, और नाना प्रकार से मन हमें उद्वेगित करता है। तो ये प्रतापरुद्र महाराज का देखिए फेलियर है स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस मैंने शीर्षक दिया है, क्योंकि ये शुरुआत है, ये सब प्रसंग उनके फेलियर का वर्णन है। इच्छा क्या है? महाप्रभु का दर्शन, लेकिन प्रयास विफल। तो एक दृष्टि से पग पग पर उनको कितनी विफलताएं प्राप्त होती हैं, और जब महाप्रभु दर्शन देना आरंभ करते हैं वो भी क्रमशः 6 इंस्टॉलमेंट में महाप्रभु कृपा देते हैं। जब ये प्रसंग आगे बढ़ेगा तब हम देखेंगे, धीरे धीरे महाप्रभु उनको अंदर आने देते हैं। तो कई लोगों को दक्षिण भारत में यूं ही एक क्षण में दे दिया, और प्रतापरुद्र महाराज को बिल्कुल खींच तान के बुरी तरह से कसरत करवा कर उन्होंने कृपा दी। तो ये महाप्रभु हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं कि यदि कोई साधक हो, साधना भक्ति में आगे बढ़ना चाहे, तो अनेक दैवी गुणों को अपने जीवन में प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे वो आगे प्रयास करे, और कृपा कब प्राप्त होगी इसकी आकांक्षा मन में नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। अभी तो खैर केवल हम इतना ही देखे हैं कि कैसे वो नम्रता अपना व्यक्त कर रहे हैं। परम कृपालु तेन हो ब्रजेंद्र नंदन, को न जन्मे मोरे अवश्य दिबे न दर्शन। कह रहे हैं परम कृपालु हैं ब्रजेंद्र नंदन, भले मैं अयोग्य हूं लेकिन कोई भविष्य के जीवन में मुझे अवश्य दर्शन देंगे। ये उनका अगला गुण है, वो है धैर्य, पेशेंस। कोई जन्म में दर्शन लेने के लिए तैयार है प्रताप रुद्र महाराज। ये धीरज की भावना भक्त के मन में होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी हम लोग धीरज खो बैठते हैं कि इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है, टाइम क्यों लग रहा है। जैसे एक भक्त थे, वो मुसलमान बैकग्राउंड से थे और वो काबा में गए मक्का। उनको भक्त लोग कहीं पे मिले थे और मंत्र का थोड़ा ज्ञान दिया था। और जब वो मक्का में सर्कमएम्बुलेशन कर रहे थे तो अचानक अंदर से एक प्रेरणा हुई हरे कृष्ण मंत्र जपने की। तो हरे कृष्ण जपने लगे। आसपास सब लोग देखने लगे, क्या बोल रहा है ये। अचानक वो चुप हो गए, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो वहीं ख़त्म कर देंगे उनको। तो वहाँ मक्का में प्रवेश करने के पहले सबको गोमांस चखाते पहले, ये प्रूफ के लिए कि भाई ये मुसलमान ही है, दूसरा कोई तो नहीं, क्योंकि हिंदू कभी गोमांस चखेगा नहीं। तो ये अचानक जपने लगे जोर जोर से, अंदर अंदर ही अंदर और जोर जोर से मंत्र जपने लगे। और इतना उनका प्रेरणा बढ़ गया कि बाहर निकलने के बाद तुरंत वो हरे कृष्ण मंदिर में गए और वहीं ज्वाइन हो गए। तो बोले भगवान प्रेरणा देना चाहते हैं तो मक्का में भी दे सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र का प्रेरणा। और इस तरह वो अभी भी इतने बढ़िया प्रकार से भक्ति कर रहे हैं। तो किसको कभी क्या प्रेरणा प्राप्त होगी ये कह पाना बहुत कठिन है। और कब किस प्रकार हम अपने जीवन में वास्तविक प्रगति देखने लगेंगे वो भी कह पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमको धीरज धारण करना है। और इसलिए ये वर्णन आ रहा है कि जैसे जैसे प्रभुपाद वर्णन किया करते थे कि जब व्यक्ति भक्ति में स्थिर होगा, स्टेडी, तब भगवान उसके साथ आदान प्रदान करना आरंभ करेंगे। स्टेडीनेस, जैसे वो एक दुकान का नाम है आनंद मैट्रेस शॉप, और उसमें नीचे लिखा हुआ है 8 आवर्स ऑफ ब्लिस, कि रात को सो जाओ 8 घंटा आनंद। तो मैट्रेस शॉप का नाम है आनंद मैट्रेस शॉप। तो लोगों का अभी ये स्तर पे है, आनंद मतलब क्या, सो जाना, सो गए मतलब आनंद, उसके ऊपर वो कुछ जानते नहीं है कि नहीं। जैसे हमारे शिक्षाष्टक लोग बता रहे, जर्मनी में एक दुकान है जहां पर वो लोग बिस्तर बेचते हैं अलग अलग टाइप का, बहुत हाई फाई डिजाइनर बिस्तर है $50,000 का। वो बिस्तर में सबसे पहले आवाज आएगी अंदर से, ऐसा लगेगा कि कोई बांसुरी बजा रहा है दूर से। तो अगर उससे नहीं उठा तो फिर हल्का पानी की कलकल सुनाई पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि वाटरफॉल है कहीं, ऐसा साउंड आएगा। उससे भी नहीं उठा तो फिर धीरे धीरे वो जो बिस्तर है थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिलने लगेगा। तो उससे भी नहीं कुछ हुआ तो अचानक जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आएगी, जो कि भारत में मुफ्त में मिलता है, बड़े बड़े बिल्डिंग के बाहर भी कुत्ते भौंकते रहते हैं। और उससे भी कुछ नहीं हुआ तो पूरा बिस्तर पलट के साइड में हो जाता है और उसको गिरा देता है नीचे, अब तो उठ ही जा। तो ये बिस्तर खरीदने के लिए लोग $50,000 देते हैं। और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है किस लिए, ये सब कार्य करने के लिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसको और प्रगतिशील बनाने। लेकिन यहां प्रताप रुद्र महाराज का उदाहरण देखिए, यहां पे वो कह रहे हैं यदि सही महाप्रभु न पाई कृपा धन, किबा राज्य किबा देह सब अकारण। क्या राज्य क्या देह ये सब अकारण है, मुझे चाहिए तो केवल कृपा धन चाहिए। तो इस तरह महाप्रभु के साथ प्रताप रुद्र महाराज की और सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। तो समय अभी पूरा हो रहा है, ये प्रसंग हम लोग और आगे कल बढ़ाएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
प्रभु जी थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी एक सवाल था कि जैसे आपने बताया कि प्रताप रुद्र और सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय, तो जैसे रामानंद राय को कृपा मिल रही थी और प्रताप रुद्र उसके लिए प्रयास कर रहे थे, तो रामानंद राय को कैसे किस भाव क्या भावना आती है जब जैसे उसको कृपा मिल रही है, तो वो मतलब उनको कृपा वो कॉजलेसनेस ऑफ द उस समय लगता है कि देखो मेरे को योग्य I was actually able to get this. How to feel that causelessness of that mercy on that for that person who is getting?
तो प्रश्न है कि रामानंद राय को इतना कुछ मिला तो वो किस तरह से उन्होंने उस कृपा को स्वीकार किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग को थोड़ा कुछ मिलता है तो हम लोग बिल्कुल चढ़ जाते हैं, उड़ने लगते हैं और हमको लगता है कि बस हो गया, भगवत धाम में आ गया। तो रामानंद राय जब कथा कहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि ये इच्छे सुनि लो ता इच्छे देख लो तोमार महिमा राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुमी सीमा। जैसे मैंने आपका सुना था वैसा ही वर्णन देख भी लिया, राधा कृष्ण के प्रेम रस के आप ज्ञान की सीमा हो। महाप्रभु उनकी स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु को है आगे कहो सुनिते पाए सुखे अपूर्वामृत नदी वहे तोमार मुखे। आपके मुख से ये अमृत धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, बहती चली जाए, बोलते रहो ये कृष्ण कथा। तो रामानंद राय क्या कहते हैं, राय कहे आमिनट तुमी सूत्रधार तुमी यही नचाओ ताई ताई छे नाची बार। मैं तो केवल एक कठपुतली हूं और नचाने वाले आप हो, जैसे आप नचाओगे मैं नाचूंगा। मोर जिह्वा वीणा यंत्र तुमी वीणा धारी तुमी यही कहो सही कहा ही उच्चारी। मैं वीणा और आप वीणा धारी, तो जब वीणा धारी वीणा बजाएगा तभी तो कुछ निकलेगा। तो कह रहे मेरी मेरी जिह्वा जो है वीणा यंत्र है और आप बजा रहे हो, जैसे जैसे जो जो शब्द कहलवा रहे हो निकल रहा है। तो इस तरह मैं उच्चारण कर रहा हूं, मैं जानता नहीं क्या उच्चारण कर रहा हूं, यह सब आपकी कृपा है। तो महाप्रभु जब इस बात को सुनते हैं तो महाप्रभु कहते हैं प्रभु को है मायावादी आमी तो सन्यासी कृष्ण भक्ति नहीं जानी मायावादी भाषी। महाप्रभु भी छोड़ते नहीं, बोलते तो मैं तो मायावादी सन्यासी हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल मायावाद के सागर में डूबता रहता हूं, पता नहीं आप इस तरह क्यों बात कर रहे हो, मैं सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे कहा था इसलिए मैं आ गया। तो इस तरह दोनों एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं। तो रामानंद राय की जब स्तुति हुई तो रामानंद राय ने वो सब स्वीकार नहीं किया। जब महाप्रभु उसको कहते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुमी सीमा, क्या डिग्री दे रहे हैं और वो भी कौन डिग्री दे रहा है, चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु सर्टिफाई कर रहे हैं राधा कृष्ण के ज्ञान रस की तुम सीमा हो, है कि नहीं। हम लोग को तो भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव वगैरह मिल जाता है छोटा मोटा, उसमें भी हमको लगता है कि हाँ भाई हम शास्त्री बन गए, चलो कम से कम गीता और ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये सब तो मैंने अब पढ़ लिया है, कम से कम एग्जाम तक तो याद था, आगे फिर टटोलना पड़ता है बार बार। तो सोचो अगर कोई आपको कहे राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुमी सीमा, कि राधा कृष्ण के प्रेम रस के ज्ञान की तुम सीमा हो, अगर ऐसा कहो तो बस ऐसा उड़ने लगेंगे कि उतर ही नहीं पाएंगे। तो ये नहीं कि यहां पर रामानंद राय ने एकाध कुछ श्लोक सुना दिया और महाप्रभु करे वाह वाह बहुत सुंदर, वो बिल्कुल गहरा तत्व ज्ञान और उसमें से केवल थोड़ा सा ही यहां पर वर्णन किया गया। कविराज गोस्वामी यहां पर इसलिए अंत में वो कहते हैं कि किस तरह सहजे चैतन्य चरित्र घन दुग्ध पूर, रामानंद चरित्र ताते खंड प्रचुर, कि महाप्रभु का जो चरित्र है वो रबड़ी की तरह था और रामानंद राय का चरित्र खड़ी शक्कर की तरह। तो दोनों रामानंद राय और महाप्रभु मिले तो ऐसा लगा कि रबड़ी में खड़ी शक्कर घोल दो तो कैसा मीठा हो जाता है। और फिर वो आगे कहते हैं राधा कृष्ण लीला ताते कर पूरा मिलन, भाग्यवान यही सही कुर्यास्वादन। और वो जो बात करने लगते हैं, वार्तालाप करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसा जैसे कर्पूर मिला दिया हो उसमें। तो पहले रबड़ी और खड़ी शक्कर को घोल दिया, फिर ऊपर से थोड़ा कर्पूर मिला दिया तो उसका स्वाद कोई सीमा नहीं। भाग्यवान यही, बड़ा भाग्यवान है सही करे आस्वादन, जो उसका आस्वादन करे। तो ये प्रभु ने अपने कुछ विशेष अंतरंग पार्षदों के साथ इस तरह आदान प्रदान किया। तो विशाखा सखी जो है भगवत धाम की, तो महाप्रभु के साथ जो आदान प्रदान हो रहा है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ललिता सखी, तो उनका आदान प्रदान जो है हम लोग समझ नहीं सकते। इससे हम यही शिक्षा लेते हैं कि जो हमको कोई स्तुति करे, क्रेडिट दे, हमको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे एक प्रभुपाद के शिष्य उदाहरण दे रहे थे हॉट पोटैटो, अगर कोई आपको बटाटा हाथ में दे आलू तो आप पकड़ लोगे, लेकिन गरम गरम उबलता हुआ आलू कोई फेंके और आपके हाथ में आए तो कैसा है वो, गरम है। तो गरम है तो उसको आप हाथ में ठंडा करोगे क्या? और 10 लोग खड़े हैं तो तुरंत आप दूसरे के जरा ये लेना पोटैटो, बोले क्यों दे रहे, नहीं बस मेरी ओर से भेंट, ददाति प्रति गृहणाति, लो। तो हाथ में लेके बाप रे ये क्या है, वो दूसरे को देगा। तो सम्मान को हॉट पोटैटो की तरह स्वीकार करना चाहिए। कोई सम्मान दे, स्तुति करे तो लगना चाहिए अरे ये तो गरम गरम बटाटा आ गया, बटाटा वड़ा नहीं जो खाए जो के आराम से। हमारा उल्टा है, गरम गरम बटाटा वड़ा लगता है हमको, बोला थोड़ा ठंडा कर लेता हाथ में ही, खाने में मजा आएगा। इतना सम्मान पता नहीं फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं, जब मिल रहा है ले लो, उसके बाद फिर मैं त्रिनादपि सुनिश्चय कल सुबह गाऊंगा शिक्षाष्टक में। लेकिन अब जब तक चल रहा है मार्केट, क्या भरोसा है कि नहीं। तो अपना चेतना भी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरह ऊपर नीचे चलता रहता है। जितना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन नहीं होता, उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन हमारी चेतना में होता है। कभी लगता है मंत्र जपते जपते ओहो आज तो 64 बिल्कुल चला लूंगा, और अचानक 14वें माले पे आके अचानक बूम मार्केट डाउन हो जाता है, और लगता है अरे क्या हो गया, आज तो चप ठीक चल रहा था अचानक डाउन हो गया। तो इस तरह अपने को गाड़ी रोज धक्का मार के चलाना है। भारत में देखा होगा, भारत ही ऐसा देश है जहां धक्का मार के चलाते गाड़ी, कभी दूसरे देश में देखा नहीं ऐसा धक्का मारने का कॉन्सेप्ट। इसलिए फॉरिनर लोग आके फोटो वोटो खींचते हैं सब चीज का, क्योंकि कई बातें जो अपने को नॉर्मल लगती है वहां उनको अद्भुत लगती है, बोलो धक्का मारना वाह क्या गजब की बात है, चार पहिया बनाए फिर भी चार आदमी इसको मार रहे धक्का। तो इसलिए गाड़ी कहीं बंद भी पड़ जाए तो फिर धक्का मारना है, तो धक्का मारने के लिए चार लोग लगते हैं ना, इसलिए चार लोगों के साथ बैठ के जप करना चाहिए। क्योंकि माला करते करते कभी अपना इंजन डाउन हो जाता है, गाड़ी बंद पड़ जाती है, तो दूसरों को जरा धक्का मारो भाई। पता नहीं आजकल धक्का मारते कि नहीं, हमारे यहाँ तो पहले बहुत मारते थे धक्का, इंजन बार बार डाउन हो जाता था। और कभी एम्बेसडर कार में सामने एक वो होता था घुमाने वाला हैंडल, घूम 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 घुमाओ, तब जाके चलता था वो। तो ठंडे इंजन को चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए भक्तों के संग में आप रहोगे तो किसी न किसी का तो मार्केट ऊपर रहेगा ही, एक साथ सबका डाउन और एक साथ ऊपर नहीं होता यहाँ पे भक्तों के संग में, है कि नहीं? ऐसा कभी नहीं होगा अचानक सब लोग डाउन है, सब मायूस हैं, कीर्तन गाओ तुम गाओ नहीं, पूरे 600 के 600 लोग कह रहे मूड नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। और अचानक अगले सब लोग उछल रहे, सब लोग कीर्तन बंद होने का नाम नहीं, चार घंटा चल रहा है, सब लोग एक्सटेसी में, ऐसा नहीं होता। 10-12 लोग ऊपर हैं तो 10-12 लोग नीचे हैं, तो 20-30 लोग आनंद में हैं तो 20-30 लोग मूड नहीं है, 20-30 लोग अच्छा भूख लगा है, 20-30 लोग को भूख नहीं लगा, इसलिए प्रसाद अपना मैनेज हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता एक साथ 400 लोग बोल रहे भूख नहीं है आज और फूड फॉर लाइफ करना पड़े, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए सब संग में रहेंगे तो एडजस्ट हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है रामायण में कि कभी लक्ष्मण घायल होते थे तो हनुमान जी उनकी मदद करते थे, कभी जाम्बवान और बाकी सैनिक डाउन होते थे तो फिर विभीषण उस समय आ जाते थे सांत्वना देने के लिए, कभी रामचंद्र जी डाउन हो जाते तो लक्ष्मण उनका साहस बढ़ाते थे। तो हमेशा कोई ना कोई उस युद्ध में कभी डाउन रहता था, लेकिन दूसरे हमेशा रहते थे उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। तो इसलिए दूसरे लोगों की आवश्यकता है, दूसरे भक्तों के संग में जब हम आगे चलेंगे तो भक्ति करना इतना कठिन नहीं, नहीं तो अकेले में मन पागल कर देगा। कलयुग का मन है, जैसे मैंने कल बताया कलयुग में मन में रायट चल रहा है, रायट जब रायट चलता है तो भारत में सबसे पहले पुलिस आके अपना मेगाफोन में चलाती है, चिल्लाती है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, अनुशासन भंग मत करो। और मेगाफोन कभी कभी चलता भी नहीं तो सुनाई भी नहीं पड़ता लोगों को, और रायट करने वाले अपना रायट किए जा रहे हैं, दंगा फसाद, फिर वो अपना डंडा निकाल के दिखाते हैं, चुप हो जाओ शांत हो जाओ डंडा मारेंगे, उससे भी कुछ नहीं होता। फिर टीयर गैस शेल फेंकते, टीयर गैस मारते तो भी केवल आंसू बहता है, लेकिन जो बदमाश है वो चाहे रोएगा भी लेकिन बदमाशी नहीं छोड़ेगा, तो और क्रोध में आके दो चार पत्थर और मारता है। तो पुलिस बोलते ठीक है अभी डंडा चलाना पड़ेगा, तो डंडा चलाने लगते, लाठी चार्ज, उससे भी बदमाश लोग बंद नहीं होते, तो हाथ में बंदूक लेके फिर हवा में गोली चलाते हैं, ठाए ठाए ठाए। तो उनको लगता है क्या दिवाली का फटाका चल रहा है, छोड़ो, फिर भी लगे रहते हैं पुलिस को मारने में तुली हुई। तो पुलिस पैर में गोली चलाती है, उससे कुछ नहीं होता, एक दो लोगों को मार भी देते हैं तो लोग इतना क्रोधित हो जाते पुलिस पे चढ़ जाते, तो पुलिस फिर भाग भाग कर अपना जान बचाकर आर्मी के पास जाती है। फिर आर्मी का टैंक आता है और आर्मी का टैंक लाकर सबको दिखाता है, तब सब जब घर जा भाग जाते। तो वैसे ही ये कलयुग के मन में इतना भयंकर दंगा चल रहा है कि बाकी वैदिक अनुष्ठान और जितने यज्ञ और बाकी योग क्रियाएं ये वो ये सब पुलिस की डंडा की तरह है। हमारे मन के काम क्रोध लोभ को शांत करने में कुछ उनका सफलता नहीं मिलता है कि नहीं? बाकी कोई भी आप यज्ञ करो ये करो, लेकिन क्रोध अंदर से ऐसा काम और क्रोध का दंगा चल रहा है कि वो बिल्कुल लाठी वाठी उठा के फेंक देते। तो इसलिए कलयुग के मन के रायट को दंगा को रोकने के लिए महाप्रभु का तोप लगता है। जब महाप्रभु का मिशन का पूरा आर्मी आता है और फिर तोप चलता अंदर से हरे कृष्णा ढूम, तब जाके काम करो बोले कौन आ गया भाई, तब जाकर कर्फ्यू लगता है और तब जाकर शांत होता है। कर्फ्यू मतलब जब तक टैंक चलता है तब तक कर्फ्यू, टैंक निकलना बंद हो गया तो कर्फ्यू बंद, फिर लोग उत्पात मचाने लगते हैं। इसलिए महाप्रभु ने कहा कीर्तनिया टैंक चलाते रहो, बंद मत करो, तब जाकर मन के सारे जो वैरी हैं वो कहीं छुप कर बैठेंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि ये महाप्रभु ने हम लोगों के लिए विशेष रूप से ये वरदान दिया कलयुग के लिए। और कोई प्रश्न? जैसे देवामृत महाराज ये स्टोरी बता रहे थे, जो मैं अपने इसमें बता रहा था, शरद पूर्णिमा में मैं बताया था कि जब वो लोग लॉस एंजलस में थे तो वो लोग एक बुक बेच रहे थे, और बुक का नाम था, मतलब उस समय बहुत बुक फेमस था, साइको एनालिसिस का बुक था, आई एम ओके यू आर ओके। और भक्त लोग जब गीता बेचने जाते तो सब बाहर के पब्लिक पूछती है, आई एम ओके यू आर ओके बुक है क्या, गीता नहीं चाहिए हमको। तो प्रभुपाद बोले क्या करने का इनके प्रश्न का, प्रभुपाद बोले गीता दिखाओ और बोलो दिस बुक इज आई एम ओके यू आर नॉट ओके, ये बुक है, ये मैं ठीक हूं क्योंकि मैं गीता पढ़ रहा हूं, तुम नहीं पढ़ रहे, यू आर नॉट ओके, समझो तुम कौन हो। तो इस स्तर पर पहले लोगों को लाना है, फिर धीरे धीरे प्रमाद जब कम होगा अहंकार का, तब लोग समझने लगेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट वी शुड डू।